ओम शांति, ओम शांति। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी यहाँ पर दो दिन से इतना सुंदर प्रोग्राम, मेडिटेशन के सेशंस, साथ में हमारे जो गेस्ट आए हैं उनके अनुभव आप सुन रहे हैं। होप आपको बहुत अच्छा और एनर्जी वाला लग रहा होगा। और आज का जैसे कि टॉपिक है गॉड्स विजन, establish a happy and lawful society, इसके लिए हम दो दिन से सुन ही रहे हैं। और परमात्मा की तरफ अगर आप देखें तो वो हमें बहुत सुंदर एक बात बताते हैं कि जहाँ पर लॉ और लव और लॉ का बैलेंस है, वो परिवार, वो समाज, वो हर जगह बहुत सुखदाय है। तो आप भी एक बार प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लेकर आए। तो साथ में जो बैठे हैं उन्हें बहुत अच्छा प्यार भरा थैंक यू बोल दें। एक बार देखें अपने इर्द गिर्द, है ना, एक प्यार है और एक अब लॉ आएगा। लॉ ये है कि हमें बहुत प्यार से, प्रेम से अपने आप को ये दो घंटे सुनना भी है और सुनने के साथ साथ अपने अंदर जो कल छोटी सी गुड़िया ने अफर्मेशंस दी हैं उसको अपने अंदर लेकर जाना भी है। तो 3 मिनट परमात्मा की याद से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सभी सीधे होके बैठेंगे और जो पीछे बैठे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ की शोभा, मंच से देखने वालों की शोभा और अच्छी लगेगी। तो सभी आगे आके बैठें और 2 मिनट परमात्मा की याद में अपने आप को लेकर जाएं और प्यार से अपने आप को हम भरपूर करें।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ,
शांति। बहुत सुंदर, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। और उस प्यार में जब हम अपने आप को रखते हैं तो सोसाइटी लॉफुल के साथ साथ हेल्दी तो होती है, लेकिन मन भी हमारा हेल्दी हो जाता है और हेल्दी मन से हेल्दी समाज जल्दी से ही बन पाता है। तो आपका इस सत्र में आप सबका तहे दिल से, हम सब की ओर से, जूरिस्ट विंग की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी हम मंच पर हमारे सभी गेस्ट को बुलाना चाहेंगे। सभी मंच पर पहुंचेंगे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी, जो कि इंदौर से हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं जूरिस्ट विंग के। हम आपको भी कहेंगे कि आप भी मंच पर पहुंचे। आपने बहुत सुंदर, हम सब ने उनका बहुत सुंदर सेशन गीता का भी सुना, इनॉग्रेशन में भी हमने आपको सुना, और हम चाहेंगे आप अब भी मंच पर हमारे मध्य पहुंचे। उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कल्पास सत्येंद्र जावरी जी, आप भी मंच पर पहुंच जाएं। खास आप इस प्रोग्राम के लिए हमारे मध्य पहुंचे हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स ब्रदर श्री संपूर्णानंद तिवारी जी, आप भी मंच पर पहुंच जाएं। ब्रदर श्री आसीम अमिताभ दास जी, आप भी मंच पर आ जाएं। बीके डॉक्टर बबुल बाबूलाल यादव जी, आप भी मंच पे पहुंच जाएं। और इतना ही नहीं, मंच की शोभा और बढ़ जाती है जब हमारे बीच में उस परमात्मा की याद को लेकर, परमात्मा क्या है उसको बताने जब सिस्टर्स हमारे साथ मंच पर होती हैं, तो राजयोगिनी बीके मनोरमा दीदी रतलाम से आप भी मंच पर आ जाएं। और शोभा और बढ़ती है जब चेयरपर्सन ब्लेसिंग्स देने स्वयं हमारे पास पहुंच जाते हैं। राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी जी न्यू दिल्ली से, आप जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं। और साथ ही साथ बीके प्रदीप भाई आबू रोड से, जो कि एडवोकेट हैं, मेंबर हैं जूरिस्ट विंग के। तो आपकी तालियों में अच्छा तो मजा है, लेकिन तालियों में मजा और आ जाता है जब वो तालियां हमारे लिए नहीं, आपके अपने लिए बजती हैं। तो अपने लिए ताली बजाएं और इस सभा को और अपने आप को हम इसमें हेल्दी रखें, क्योंकि आज का टॉपिक ही है हेल्दी हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी। क्योंकि जब हैप्पी होने के लिए हेल्दी होना भी आवश्यक है, और हेवन अगर हमको लाना है, क्योंकि हेवन का शब्द भी एच से शुरू होता है, तो इस सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए हमारा खुश रहना, हमारा हेल्दी रहना और इस लॉफुल सोसाइटी को बनाए रखना, इस सब में आप सबका भी योगदान जब हमें मिलता है तो हम उसको और आगे बढ़ा पाते हैं। तो अभी हम इस वेलिडिट्री सेशन को शुरू कर रहे हैं, और उससे पूर्व हम अपनी सिस्टर्स को कहेंगे कि आप तिलक से, बैचेस से, प्लांट से, जो भी स्टेज पर हमारे सीनियर्स बैठे हैं, उन सभी का वेलकम करें। और साथ में जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, आपकी तालियों से इस वेलकम में चार चांद लग जाएंगे, तो आप तालियां बजाते रहें। और अपने आप को भी, आपको पता है ताली बजाने से भी एक एक्सरसाइज होती है, तो वो एक्सरसाइज करें और साथ साथ लॉफुल सोसाइटी को बनाने में हम सबका सहयोग इसलिए रखें। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और उस प्रोग्राम में हम सभी के मध्य हमारे चेयरपर्सन पुष्पा दीदी भी उपस्थित हैं, और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं उनको भी बैचेस से और बुके से सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी हमारे मध्य बीके युगरतन भाई, जो कि शांतिवन से हैं, और आपका जो गीत है बहुत प्यारा है, सबका मालिक एक। तो आप सभी एक बार बोले, सबका मालिक एक, और इशारा कहाँ करें, हाँ तो करके दिखाएं, सबका मालिक एक। तो फिर बटा हुआ संसार क्यों है, बहुत सुंदर ये गीत के बोल हैं, जो कि हम युगरतन भाई के मुख से इस गीत को सुनेंगे।
एक खुशहाल और जो न्यायपूर्ण समाज की जो स्थापना का संकल्प हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं, वो हम सबका ग्लोबल कोऑपरेशन एक साथ जब होगा तो जरूर ऐसा समाज बनेगा, क्योंकि हम जब मानते हैं कि वो सुप्रीम जिससे हम सब शक्ति लेते हैं वो एक है, वो परमात्मा जिसे मालिक कहते हैं, तो क्यों नहीं हम भी एक हो जाएं इसी भावना के साथ। आइए आज उस संकल्प को दृढ़ करते हैं और उसे पोषित करते हैं पूरे विश्व की ओर।
अयम निजः परो वेति कर्णा लघु चेतसा उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है, ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है, ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए, भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
परमात्मा के बच्चे कभी अलग अलग नहीं होते, जाति धर्म ये सब कुछ तो हमारा ही बनाया हुआ है।
और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया,
ये सब हमने ही बनाया,
आज आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया,
अपना लगे पराया।
अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है,
अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है।
माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है,
माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है।
जीवन नैया पार उतारे शिव ही वो पतवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
बहुत सुंदर, बहुत खूब एक शब्द था, सच कहो तो ये पूरी दुनिया अपना ही क्या है, संसार है। और इस संसार में इतना सुंदर ये हेवन बनाने का संकल्प हम सबका है। तो शुभ कामनाओं का लगा के संकल्प चंदन, शुभ कामनाओं का लगा के संकल्प चंदन, रूहानी दुआओं से कर रहे आपके ही मधुबन घर में आप सभी का रूहानी अभिनंदन, आप सबका रूहानी अभिनंदन। एक होता है अभिनंदन और एक होता है रूहानी। तो उस रूहानी को रूहानियत वाले शब्द में जो लेकर आए वो हमारे युग रतन भाई थे, क्योंकि पहला ही शब्द आया ओम शांति। आप सभी बोले ओम शांति। तो वो ओम शांति जब ये सबके अंदर से निकलेगा तो लॉफुल सोसाइटी बनने में ज्यादा समय, हैप्पी और लॉफुल सोसाइटी बनने में ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा। फिर ये कॉन्फ्रेंसेस धीरे धीरे सभी कॉन्फ्रेंसेस में क्या हो जाएगा, एक हेविन की स्थापना के लिए बात और चर्चा शुरू हो जाएगी। तो अभी हम इस प्रोग्राम में और बहुत सुंदर ये क्या है गॉड्स विजन, एस्टेब्लिश अ हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी, इसको अच्छे से समझाने के लिए कीनोट स्पीच हमारे सम्मुख रखने के लिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी भाई जी, जो कि इंदौर से हैं और जूरिस्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। इतना ही नहीं, आप देखें तो गीता का कितना सुंदर गहरा हमें रहस्य उस मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें बताया, क्योंकि गीता पूरी कर्मा पे ही रिलेटेड है। और आप बहुत व्यस्त थे लगभग 12-13 दिन से, फिर भी आप समय निकाल कर हमारे मध्य आए, तो हमारी तालियों की गड़गड़ाहट कैसी होनी चाहिए। तो हम सुनते हैं बहुत सुंदर गॉड्स विजन, एस्टेब्लिश अ हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी।
थैंक यू यशुवेन। हमारे इस नवीन सत्र में कहें, वैसे तो वेलिडिक्ट्री है किंतु हमें अपने क्षेत्र में जाकर नई बिगिनिंग शुरू करना है, इसलिए इस नवीन सत्र में पुनः मीठे प्यारा बाबा के घर में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हमारे बीच बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत विद्वजन विराजमान है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री झवेरी साहब, आपने गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा में काफी लंबे समय तक उच्च न्यायालय में सेवाएं दी, समाज की सेवा करी, बहुत लैंडमार्क्स जजमेंट्स दिए। वर्तमान में भी आप गुजरात में आर्बिट्रेशन का काम करते हैं और साथ में ही उतने ही आध्यात्मिक भी हैं। हमारे बीच हमारे जुडिशियरी विंग की चेयरपर्सन आदरणीय पुष्पा बहन दिल्ली से विराजमान है, तिवारी साहब पटना से विराजमान है, मनोरमा बहन, प्रदीप भाई, ईशु बहन, निशांत कुमार जी, अमिताभ दास जी जो ह्यूमन राइट कमीशन कटक के मेंबर हैं, वे भी अपने परिवार से पढ़ा रहे हैं, अमृतराज भाई सीए, बाबूलाल जी यादव, आप सबका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा 3 दिनों में कितना लाभ मिला होगा आपको, कितने रहस्यमयी बातें आपके सामने, कितने अच्छे से हमारी प्यारी मीठी आदरणीय बहनों ने क्लियर करी होगी। और वो अमृत पान जो आपने पिया, मैं समझता हूं जीवन का सर्वश्रेष्ठ पान है, सिर्फ और सिर्फ अब आगे चिंतन का ही कमाल रहेगा कि आप उस पर फोकस करें, जहां भी रहें वहां सेवा केंद्रों पर संपर्क करें, बहनों से संपर्क करें, राजयोग की विद्या को जीवन में अडॉप्ट करें। श्रीमद् भगवद गीता की एक विशेषता है, ये गृहस्थ में रहकर ही हमको सब कुछ सिखाती है। हमें संन्यास नहीं लेना, हमें वैराग्य नहीं लेना, हमें कर्मों से भागना नहीं है। गुजरात के एक भागवत कथाकारक हुए बहुत प्रसिद्ध श्री डोंगरे महाराज जी, वो कहा करते थे, मैंने सुना उनको, कि मनुष्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, सरल बनने की आवश्यकता है। यदि आप सरल बन गए तो आपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन आज देखो हम सबसे ज्यादा कठिन हैं, कोई मिलने में हिचकता है, कोई बात करने में हिचकता है, हम अपने आप से भी हिचकते हैं, इतने अपने आप को अलूफ बना लिया है। तो सरल बनने की आवश्यकता है और यही श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। हमारी जो थीम रही है सारे प्रोग्राम की, उसी के चलते आज का विषय बहुत अच्छा, नई बिगनिंग की शुरुआत के साथ, कि इस बारे में परमात्मा का क्या कहना है, व्हाट इज द गॉड्स विजन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी। संत महात्माओं की तो अपनी अपनी बातें हैं ही, परमात्मा क्या चाहता है, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसका क्या अभिगम है, उसका क्या एटीट्यूड है। एक जेफ केलर करके दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बात यदि कोई है तो वो है उसका एटीट्यूड, दृष्टिकोण, अभिगम। यदि वह सकारात्मक है तो सब कुछ है, यदि नकारात्मक है तो सब समाप्त। श्रीमद् भगवद गीता में 2 और 4 अध्याय में वर्णन है, आत्मा का मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। आप अपने स्वयं ही मित्र हैं और स्वयं ही शत्रु भी हैं। जैसे यदि कहीं कीचड़ है तो कीचड़ को धोने का काम पानी करता है, और यदि कहीं धूल है तो कीचड़ बनाने का काम भी पानी करता है। यानी पानी कीचड़ भी पैदा कर सकता है और पानी उस गंदगी को दूर भी कर सकता है। इसी प्रकार हमारा मन हम आत्माओं का मित्र भी है और शत्रु भी है। हम इस मन को, मन के दृष्टिकोण को कैसे बदलें, यही परमात्मा आकर के हमें सिखाता है। आप लोगों में से बहुत लोग गुजराती जानते हैं, मेरे साइड में ही भाई साहब बैठे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, कहने में अच्छा लगता है मेरे को, हवाड़ा में हौसे सो नल में आउसे, अर्थात ओवरहेड टैंक में जो होगा वही आपके बाथरूम में निकलेगा। यदि पानी गंदा है ओवरहेड टैंक में तो नलों में पानी ऑब्वियसली, स्वच्छ और साफ पानी है बिस्लरी का तो भी अच्छा आएगा। ऐसे ही यदि हमारे मन और मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक सोच है, हमारा अभिगम गंदा है, दृष्टिकोण खराब है, तो हमारे मुख से जो बोल निकलेंगे वो वैसे ही रहेंगे, हमारी एक्शन में भी वही होगा। और यदि हमारे ओवरहेड टैंक में शुद्ध और पवित्र विचार हैं, तो फिर हम अपने एक्शन को, अपने कार्य व्यवहार को उतने ही अच्छे तरीके से कर इस समाज का, देश का, विश्व का परोपकार कर सकते हैं। सब कुछ माइंडसेट पर निर्भर करता है। यदि आपका मन मस्तिष्क अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, यदि मन मस्तिष्क ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए इस मन को हील कैसे करें, यह राजयोग सिखाता है, परमात्मा सिखाता है। और परमात्मा आकर के उसका यही विजन है कि बच्चे तुम अपने मन को इतना सुंदर और पवित्र बनाओ कि यह दिन और रात स्वयं को भी श्रृंगारित करे और सारे संसार को भी श्रृंगारित करे, अर्थात डिवाइन लॉज, डिवाइन वैल्यूज। हम मनुष्य आत्माएं धारण करें और सारे विश्व को उसका लाभ पहुंचाएं। मनुष्य के थॉट्स क्या कमाल के होते हैं। देखिए, दो ट्रेन खड़ी थी, लोग बोर हो रहे थे, अचानक से ट्रेन चल पड़ी, लोग बहुत खुश हुए, वहां बजरंगबली, और ट्रेन चलने लगी। थोड़ी दूर चली, 5 मिनट 2 मिनट हुए होंगे, तो दूसरा भाई बोला कि ना अली ना बली, ये तो पड़ोस वाली चली। सारा माहौल बदल गया, इससे दो ट्रेन खड़ी तो चलती थी, ऐसा लगता ना हमारी भी चल पड़ी। ऐसे ही यदि कोई भीड़ है और भीड़ में किसी ने कहा सांप, आप देखिए क्या भगदड़ मचेगी। माने हमारे थॉट्स में कितना कमाल है कि हम चाहें तो सारा माहौल बहुत सुंदर बना सकते हैं, और हमारे ही थॉट्स के माध्यम से हम सारा दूषित कर सकते हैं। इसलिए हमें अभिगम पर, दृष्टिकोण पर बहुत काम करना है, जो राजयोग सबसे सरल विधि है अपने थॉट्स को ठीक करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिए, परमात्मा जब भी धरा पर आते हैं बड़े ही सरल विधि से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे करके और मनुष्य आत्माओं का उत्थान करते हैं। अब एक बार एक भाई साहब मिले और उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहां तो सब कुछ ठीक चल रहा है, भैया आमदनी है, बाल बच्चे हैं, मान सम्मान है, यदि हम भगवान को नहीं माने तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसका उत्तर बहुत अच्छा है कि परमात्मा को तो मानना ही पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मानने नहीं मानने से, आपको फर्क पड़ेगा। रामायण जी में इसका वर्णन है कि रामचरितमानस में जब वो सेतु बन रहा था तो वानर सेना पत्थरों पर लिख रही थी जय श्री राम और समुद्र में छोड़ रही थी, और समुद्र में पत्थर तैर रहे थे। राम ने सोचा कि मेरे नाम से लोग पत्थर चिरा रहे हैं, मैं भी करके देखूं। और उन्होंने एक पत्थर उठाया चुपचाप कि कहीं कोई देख न ले, कहीं डूब गया गड़बड़ हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने नाम लिखा और पत्थर छोड़ा और पत्थर डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये कमाल हो गया। तो राम की तरफ देखकर बोले, प्रभु आप कुछ उदास नजर आ रहे हो जानबूझ के। बोले नहीं हनुमान, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ तो है। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसको आप छोड़ोगे वो तो डूबना ही है। तो इसलिए परमात्मा हमारा हाथ पकड़ के रखे तो हमारा ही बेड़ा पार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस परमात्मा द्वारा दिए गए अभी की शिक्षाओं को जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। हमारे बीच बहुत वक्तागण हैं, हम पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि मन को हील करने की प्रोसेस जरूर सीखें। मैंने उस दिन भी कहा था कि जितनी भी दुनिया में बीमारियां हैं, तन मन धन आर्थिक लॉ से संबंधित, लॉ अवॉइड करने से संबंधित, वे सब मन में उत्पन्न होती हैं। इसलिए मन को हील करना यदि हमने सीख लिया, जैसे प्रथम लेवल पर मन पर आती है बीमारी, और वहीं यदि आपने हील कर दिया उसको तो आगे नहीं बढ़ेगी। अन्यथा साइकोसोमेटिक प्रोसेस के द्वारा वही बीमारी मन की हमारे शरीर पर परिलक्षित होने लगती है, एक्शन में आने लगती है, और फिर आप देखिए चारों ओर विश्व में कितनी गंदगी फैली हुई है इसी नेगेटिव एक्शन के कारण, क्योंकि हम मन को हील करना ही नहीं चाहते या हील करने की प्रोसेस पता नहीं है। तो उसे हमें जागरूक होकर के कम समय जो जिंदगी का बचा है उसे भरपूर लाभ उठाकर और उसका फायदा लेना चाहिए। अभी हम सुनेंगे, हमारे साथ बहुत विद्वजन है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर बातें आपने हमें बताई और लाइव एग्जांपल्स जो होते हैं आज के समय पर जो हम सुनना चाहते हैं उसको आपने बताया, और लास्ट में उसको जो समअप किया तो एक गुड फीलिंग होती है और उस फीलिंग में एक हीलिंग प्रोसेस होता है, तो हील होता है। आप देखिए पेन में नेगेटिव फीलिंग आती है लेकिन हीलिंग में पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो हीलिंग इज अ गुड फीलिंग। तो जब आप परमात्मा के घर में आते हैं तो क्या होता है, हमारा मन हील होता है, और हील वाला मन एक अच्छी सोसाइटी को क्या करता है, क्रिएट करता है अपने थॉट पावर से। तो बहुत सुंदर भाई साहब, और इसी को कहते हैं कि हैप्पी जो है वो हेल्दी है, और जो हेल्दी है वो क्या है, हार्मनी में है, और जो हार्मनी में है वो इसी समय हेवन में है। हेवन के लिए कहीं और नहीं जाना है, यही हमारा जो स्थान है या हमारा जो अपना घर है या हमारी जो सोसाइटी है वो भी एक हेवन है। और उस हेवन में कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं, तो ताली किसके लिए बजनी चाहिए, अपने लिए बजनी चाहिए। और साथ में थैंक यू ब्रदर, बहुत सुंदर आपने हमें इस जो आज का टॉपिक है इसको अच्छे से इलैबोरेट किया। और अभी जैसे कि राठी जी ने भी हमें बताया कि चीफ जस्टिस चीफ गेस्ट हमारे बीच में बैठे हैं, और आज सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आप हमारे बीच में आए हैं। एक तो आपका हम सब की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने इस परमात्मा के कार्य में एक उंगली नहीं लेकिन अपना पूरा समय हमको दिया है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जवेरी जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, और जैसे कि गुजरात में भी आपने कार्य किया उसके बारे में भी बताया, और इतना ही नहीं राठी जी ने तो थोड़ा सा गुजराती में बोलकर भी हमें बताया कि उसको आगे सारा एक्सप्लेन भी किया, तो अभी हम चीफ गेस्ट से निवेदन करेंगे कि आप भी अपने विचार हमारे मध्य रखें।
Sorry, I will not be in a position to speak in Hindi. I have prepared my speech in English. So you have to bear me out. Dignitaries on the dais, my brothers and sisters, topic selected by the management was difficult, and a society where you have to prove your love. You can say somebody in openly that I hate you, but you can't say anybody that I love you. That's the society. So topic which selected, I will try to cover up in different stages of different languages by the different professors. And ultimately I will sum up what are the actions we can take for achieving the happy and lawful society. Love and compassionate, treating all individuals. Let us start with our servant. All treating all individuals with kindness, empathy and respect. We need to grant each other the dignity of difference. We also need to find those things that build bridges between our differences. And loving kindness does that. This is the definition by John Burton, who was professor of religion and philosophy and was director for the Center of Faith and Learning. He has further contended, somewhere he has written, this idea that the fountain of peace is this mutual compassion, mutual mercy, this mutual love, and that we extend to one another, and that is what God calls people to. When speaking about the Indian religion, Hinduism, Jainism, Buddhism, Professor Barton said, while there may not be a direct translation for the word love, there is an ethic of loving kindness. The word karuna is Sanskrit word for compassion. Barton said in his Hinduism and Jainism, there is a concept of ahimsa, meaning non-violence or non-harm. Their ideas are ethic and mercy and compassion is very similar to Arabian concept of love. Then the second topic is justice and equality. Ensuring equal opportunity, rights and treatment for all. Justice and equality are both two abstract concepts with the numerous controversial definitions that are never agreed upon depending on the situations. Justice can be the same as equality or not. In the modern world, justice is often used as political slogan rather than a meaningful pursuit. Meanwhile, equality is also one of the leading ideals of political movement such as equal rights, movements for marriage, voting, etc. In the movement such an equal rights of movement for marriage. Justice the same is equality, it is necessary to understand precise meaning of equality and justice, the relation between the measurement of two and their current historical status. Third thing which I have covered is forgiveness and mercy. Practicing forgiveness and showing mercy to those who have hurt, it's very difficult. If somebody has hurt us, we will forgive but we will not show him mercy. Whenever we'll get a chance, we'll show him what power we have. Therefore, the third practice which we are required to do is not only forgiveness, but also show mercy to those who have hurt us. Then the fourth subject which is required to be covered is truth and honesty. Upholding truthfulness and honesty in all interactions, who is responsible for helping and us imbibing the virtue of reach, the truth. A preacher has to be a seeker of truth first and foremost. as a byproduct, he may inspire us and show us the way to highest truth, the truth and the truths. Instead of inspiring us to imbibe the highest idea of our respect, scriptures, religion, to have lost the way and are no longer in fashion. Then education can also help to have a truth and honesty. Then the fifth topic which is required to be discussed is responsibility and accountability. Talking responsibility for one's action and being accountable for their consequences. Now I have given certain social responsibility structures, how to get this society. First is community based, fostering a sense of community and social connection. Volunteer and services, encouraging individual to serve others and contribute to the greater good. Education and personal growth, providing opportunity for learning, self-improvement and personal growth. Environmentalness, protecting and preserving the natural environment. Conflict resolution, establishing process for resolving conflicts peacefully and constructively. Then the second B topic is of economic system. Resources based on economy, ensuring everyone's basic need are met regardless of employment or financial status. Second issue is cooperative ownership, encouraging cooperative ownership and decision making. Third, social entrepreneurship, fostering innovation and entrepreneurship that benefits society. Fourth, progressive taxation, implementing taxation policy that promote economic equality. Fifth, sustainable practice, encouraging environmentally sustainable practice in all industries. Then C, justice system. Retroactive justice, focusing on repairing harm and promoting healing rather than punishment. Rehabilitation, providing opportunity for the rehabilitation and personal growth of offenders. Third, community involvement, encouraging community practicing participation in the justice process. Transparency and accountability, ensuring transparency and accountability within the justice system. Fifth, human rights, upholding the protecting human rights and dignity. Then D, how to do it, leadership, and what is required to be done for leadership. Servant leadership, leaders prioritizing serving others and promoting the greater good. Collaborative decision, encouraging collaborative decision making and community involvement. Accountability, leaders are accountable for their action and decision. Transparency, leaders prioritizing transparency and open communication. Then fifth, spiritual guidance, leader seeks spiritual guidance and wisdom in decision making process. I have gone through your all program which you people have done for all these 2 days, and some of the topic I have tried to cover, but I am given 20 minutes. Therefore now I will sum up the good quotations which I loved. Consider life as a festival and every day is its event. So never be disheartened by any event. Nothing is greater than you and blessing of God upon you. Try to see every time some good, how small it may be, good in everything, like flood, devastating, but good for the nature to flourish itself. Be humble and thankful to everything that happens around you, as it is the creation and demonstration of Almighty and Supreme Creator that certain persons and certain events are part of your life, created by a greater one. Try to take energy from the cosmos space and all surroundings of the happiness and called nature. Thank you for giving me this opportunity. I tried to cover this subject in 20 minutes allotted to me, and I really compliment the organizers. This is the need of the society today. Let us have certain principle which I have said. Let go is the basic fundamental thing. Even in house, will not let go with the wife or the husband or the son or the daughter. If we'll try to repay in the same coin, stop that, I think you will be more happy. Thank you.
Thank you so much, brother. You're a wonderful and excellent insight which you shared with us, which I experienced in your whole speech. Unki puri speech mein, I think aap sab bhi suni rahe honge, sari values pe hi tha. Chahe accountability lein, chahe respect se unhone shuru kiya aur end kiya leadership pe. So this is the way which we are grow, and the growth of the society is to be a good leader. But apne Brahma Kumaris mein there is a very good saying ke you are the leaders, but if you want to create a leader, to humko jo banna padega, wo banna padega dharana based leader, jo hamari dharnaye hain, jo hamare ek asool hain spirituality ko, kyunki ek mature vyakti ke liye ya mature ek sanskar ke liye, the important thing is how spiritual mature you are. So thank you so much, Honorable Mr. Justice Kalpesh Satendra Jhaveri ji, former Chief Justice, High Court of Odisha, Cuttack. Thank you so much, hum Brahma Kumaris ki aur se. To respect ki baat ki, aur abhi bahut sundar hamare paas Parmatma ka diya dekhiye. Aap itna sundar parisar mein do dhai din se yahan par reh rahe hain. To sabse pehle to respect kisko mil gayi? Hame khud ko mil gayi. To hum apne aap ko bole, we are very lucky beings. Bole apne aap ko? Haan, apne dil pe haath rakke bole, we are a lucky being. Being matlab atma, hai na? To abhi aur lucky, hamare itne achhe guest of honors hamare madhye baithe hain, unko bhi hum sunte hain. To guest of honors mein hamare pehle jo guest hain manch par, unko bhi hum bulana chahenge. Unka naam hi bada pyara hai. Brother Shri Sampurn Anand Tiwari ji. है ना, आनंद ही आनंद है. तो सच में जब ऐसा आनंदमय जीवन बन जाए तो क्या बड़ी, क्या और इससे बड़ी बात क्या चाहिए. आप चेयरपर्सन हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट एपिलिएट ट्रिब्यूनल बिहार पटना से, तो आपका भी आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है. सुनते हैं आपसे आपके क्या भाव हैं इस एस्टेब्लिश अ हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी के लिए.
ओम शांति. मंच पर विराजमान माननीय न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येंद्र झावेरी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा हाई कोर्ट, हमारे बीच सुबह के भी सत्र में उपस्थित थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी, वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग, और हमारी इस सत्र की चेयरपर्सन राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी, हमारे यहाँ मंच पर विराजमान श्री निशांत कुमार डायरेक्टर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ब्रदर श्री आशीम अमिताभ दास, ब्रदर सी ए अमित राज बीके, ब्रदर डॉक्टर बाबूलाल यादव, और इस समारोह की संचालिका बहन बीके यशु, और यहाँ हमारे समक्ष जो भी हमारे सभी अतिथि आए हैं, विद्वान अधिवक्तागण और भी हमारे जूरिस्ट विंग से जो भी आए हैं, सबका हम नमन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं. यहाँ तीन दिन से ये सब कार्यक्रम चल रहा है, और जैसा हमारी बहन ने कहा कि हेवनली एटमोसफियर है, तो वास्तव में मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ और बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ. लेकिन पता नहीं क्या था यहाँ का आकर्षण कि मुझे खींच लाया, और खींच लाया तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। इतना सौभाग्य मेरा है कि मैं तीन दिन से यहाँ जो ज्ञान की सरोवर सरिता बह रही है उससे मैं अपने को अभिभूत पा रहा हूँ। यहाँ का आप वातावरण देखिए, शुद्ध वातावरण, सब सेल्फ डिसिप्लिन, हर चीज में शुद्धता, प्योरिटी। हम इसी तरह के समाज की कल्पना करते हैं बाहर में। अगर इसी तरह के समाज हो जाए बाहर में, जैसा हमारा यहाँ पर सारी व्यवस्था है, सेवा भाव है, संकल्प है, इसी तरह की व्यवस्था अगर हमारे समाज में हो जाए तो हमको कानून की जरूरत क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं किसी कानून की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है हमारे समाज में। लेकिन इतना व्यतिक्रम पैदा हो गया है कि कानून भी नहीं संभाल पा रहा है, कानून भी अपने आप असमर्थ पा रहा है। इतने ज्यादा सामाजिक व्यतिक्रम उत्पन्न हो गए हैं। तो हम लोग जो है आज का टॉपिक क्या है, इस पर आते हैं। ये तो हो गया, आज का टॉपिक है गॉड विजन। तो गॉड विजन क्या है? तो हर कोई, हम अगर मानते हैं हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, तो परमपिता परमेश्वर ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारी संतान कष्ट में रहे। वो तो चाहेंगे कि हमारी संतान खूब खुश रहे, आनंद में रहे, ब्लिसफुल रहे, चीयरफुल रहे, हरदम, जैसा हमारे ऑनरेबल मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हरदम फेस्टिवल के मूड में रहे, 24 घंटा हम लगे कि किसी फेस्टिवल में हैं, इस तरह के वातावरण में रहे। लेकिन अच्छा, पहले था भी, जो यहाँ स्पिरिचुअलिटी चल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम कैसे लाफुल सोसाइटी को बना सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी तो हमारे यहाँ हमारे देश का मूल आधार ही था। अगर केवल स्पिरिचुअलिटी से हो जाता तो कानून की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बाद जैसे जैसे समाज का विकास हुआ और हम लोग अपने को सेवक से स्वामी की तरफ की भूमिका में ले जाने लगे, वैसे वैसे व्यतिक्रम समाज में उत्पन्न होने लगे, तो कानूनों की आवश्यकता हुई। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस तो कहीं कोडिफाइड नहीं है, अल्लाह तो कोडिफाइड है, हैप्पीनेस कहीं कोडिफाइड नहीं है। तो उसके बारे में लोगों ने कहा हैप्पीनेस क्या है? पॉजिटिव इमोशनल कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड वेल बींग एंड ब्लिसफुल नेचर, ब्लिसफुल सोसाइटी। ये हमारा हैप्पीनेस का एक पैमाना हम लोग मान सकते हैं। हैप्पीनेस की आनंदपूर्ण जीवन रहे, फ्री फ्रॉम ऑल आपको जो भी टॉक्सिन्स हैं समाज के, उनसे फ्री होकर के एक हमारा ब्लिसफुल जीवन रहे। और लॉ का भी यही है, फाउंडेशन ऑफ लॉ इज ऑल्सो टू फॉर द पीसफुल सोसाइटी। हमारा वो भी है कि डिजायर ऑफ हैप्पीनेस, लॉ का भी ऑब्जेक्ट यही है, किस तरह से हमारे सिटीजन, हमारे जो भी नागरिक हैं वो आनंदित रहें, वो खुश रहें। दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है, पूरे जितने हमारी संस्थाएं हैं सबका ऑब्जेक्ट एक ही है। तो उसके बाद हमारे फिलोसफर थे अरस्तु, पहले उन्होंने कहा कि क्या है हैप्पीनेस, क्या है? उन्होंने कहा कि वर्चुअस लाइफ। अगर हम वर्चुअस लाइफ लीड कर रहे हैं वो मेरा हैप्पीनेस है। उसके बाद महात्मा बुद्ध को आप लोग जैसे जानते हैं, बहुत सारे उससे नरसंहार ये सब देखे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, डिटैचमेंट इज हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो इन सबसे आगे बढ़ते हुए फिर हुआ समाज में कैसे इसको कोडिफाई किया, अंग्रेज आए, उन्होंने लॉ को कोडिफाई किया और स्ट्रिक्ट लॉ बनाया कि कमांड ऑफ सॉवरेन, और कठोर दंड का प्रावधान किया कि अगर दंड दे दिया गया कि आई फॉर आई, टीथ फॉर टीथ, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन बाद में फिर जो है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, इस तरह के कानून को कि एक थप्पड़ के बदले किसी का हाथ काट दिया जाए ये तो उचित नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। तो कहे कि नहीं, लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, कि उसको रीजनेबल होना होगा, जस्ट होना होगा और फेयर होना होगा। और उसके बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, उसमें जो है आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को एकदम पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दिया गया। इस सब के अच्छा अभी भी हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं, फिर हुआ कि नहीं इससे भी काम नहीं चल रहा है तो क्या बात है नहीं चल रहा है, तो हम लोग वैकल्पिक साधनों पर जैसे आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, लोक अदालत है, आज भी लोक अदालत थी पूरे देश में, लोक अदालत है, इस तरह के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है समाज को न्याय दे सकें। लेकिन फिर भी अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि न्याय में बहुत देरी हो रही है, ये तो निश्चित रूप से देरी हो रही है, तो देरी के कारण सिर्फ जो है न्यायिक पदाधिकारी नहीं है, और भी सब जो है इसके हैंड है वो एक साथ माने जुड़े हुए हैं, तो सबका जब सम्यक प्रयास होगा तभी उसमें गति आएगी, और उसमें प्रयास हो भी रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कहे हैप्पीनेस, पार्लियामेंट भी यही कानून बनाती है, पार्लियामेंट का भी एक हम लोग कैसे खुश रहें वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है उसको बेटर वे में लागू कर सकें, और जुडिशियरी उसको इंटरप्रेट करती है, तो हम सब लोग कर रहे हैं अपना काम, कानून में कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। हम लोग इतना जो भौतिकतावादी हो गए हैं तो हर चीज में लूप होल खोज लेते हैं, जितना कानून बनता है लोगों के वेलफेयर के लिए उसमें हम अपना दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट खोजने लगते हैं, वो प्योरिटी खत्म हो जाती है, जहां प्योरिटी खत्म हुई उसके बाद तरह तरह का व्यतिक्रम शुरू हो जाता है, उसमें चाहे डिले होना हो चाहे और भी कानूनी रूप से प्रक्रियाओं का जो है प्रदूषित होना हो, सारे व्यतिक्रम उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है ये कानून की आवश्यकता क्या है, आखिर कानून बैड माने ये नेसेसरी इविल है, ऐसे नैसर्गिक अगर नेचुरल हुआ है तो कानून की क्या जरूरत है, जैसे यहां पर कानून की तो उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानून नेसेसरी इविल है जब हमारी जो ये है आचार व्यवहार में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है, उस श्रृंखलता आ जाती है तो कानून को अपना काम करना पड़ता है, और कठोरता से अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो समाज में और ज्यादा अराजकता और वैमनस्य पैदा होगा। अब आजकल देख रहे हैं, पहले तो सुनने भी नहीं आता था कि वैवाहिक मामले होते थे, अभी सबसे ज्यादा वैवाहिक मामले हो गए हैं, उसका वजह मुख्य है कि लोगों में अहंकार बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस आ गया है, भौतिकतावादी दृष्टिकोण है, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया जा रहा है जिसके चलते परिवार टूट रहे हैं। अभी तो हमको लगता है फौजदारी मुकदमों से ज्यादा वैवाहिक मामले हो गए हैं न्यायालयों में, और एक एक जिले में पांच पांच छह छह जो है फैमिली कोर्ट चल रहे हैं, जबकि पहले एक मजिस्ट्रेट 125 का मुकदमा देख लेते थे, बहुत कुछ मेंटेनेंस के आते थे, बाकी आते भी नहीं थे। तो इस तरह से समाज में हमारे परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, इस पर हम लोगों ने तीन दिन से विचार विमर्श किया है, और उसका समाधान यही है कि हम लोग परमात्मा के जो भी उनका कानून है वही माने, परमात्मा का कानून है कि आप जो है आपके अंदर जो मणि है इसी को जागृत करें, सारी चीज छोड़ करके, और इसको सारी चीज छोड़ना नहीं है, जो भी है इनडिफरेंट नहीं होना है, हमको रहना है डिटैच रहना है उसके साथ, जैसे कार है, कार लेके हम चल रहे हैं उसमें पता चला जरा सा कहीं से खरोच लग गया, अब उसके लिए हम मर्डर कर दिए, किसी की हत्या कर दिए, रोड रेज कर दिए, ये हुआ अटैचमेंट कि उसके साथ हम इतना आसक्त हो गए कि जो मेरे साधन था जो हमको एक दूसरी जगह ले जाता रहा था उसके लिए हम किसी की जान ले लिए, तो साधन को हमने साध्य बना लिया, इस तरह से हम जो है भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में चल गए। तो इन सब से करके यहाँ पर जो भी हमने तो खैर बहुत सीखा है तीन दिन में, और मेरा पहली बार यहाँ था, और हम लोग कोई बोलने की आदत नहीं है, मैं तो सराहना करूंगा कि यहाँ विद्वान अधिवक्तागण जो हमारे आए हुए हैं वो तीन दिन इतना ध्यान से सुने, जो कि खाली बोलने के अभ्यस्त हैं वो सुने, और हम लोग जो सुनने के अभ्यस्त हैं बोलना पड़ रहा है, इसलिए क्षमा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर सच में जैसा आपका नाम था संपूर्ण आनंद तिवारी जी, बहुत सुंदर आपने बताया। हमें आपको कहना पड़ा कि आप अपने मन के उद्गार, क्योंकि आप पहली बार यहाँ आए जैसा आपने कहा और आपको ये हेवन लगा और जो आपने पूरी बातें बताई, सच में अगर ये इतना अच्छा स्वर्ग बन जाए जैसा आप देख रहे हैं तो फिर लॉ की तो कोई बात रह न जाए। तो आपकी बातों को बहुत शॉर्ट में जो हम समझ पाए और आपने जो अपने दिल के उद्गार बताए, परमात्म श्रीमत पे चल के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके दृढ़ता से पूरे करें एक सुंदर स्वस्थ खुशहाल समाज के सपने, एक सुंदर स्वस्थ खुशहाल समाज के सपने, ऐसा आपने हमें अपने विचार हमारे मध्य रखे। और अभी हमारे मध्य से हमें मैसेज मिला है कि हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जवेरी जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, आपको जाना है, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे मध्य पहुंचे, यही हमारा बहुत बड़ा एक सौभाग्य रहा है। और आपका बहुत ही अच्छा योगदान समाज के लिए सदा ही रहता है। जब आपकी वाइफ थोड़ा सा मेडिकल भी ठीक नहीं थे तो भी आपने अपनी समाज की जो सेवाएं हैं उसको अग्रसर करते रहे। और एक मैसेज और भी आया, जब आपके फादर पास्ट हुए तो उस टाइम पर भी आपने 11 बजे जो आपके और प्रोसीडिंग्स थे और आपका कार्य था उसको भी आपने निभाया। तो आप देखिए, ये एक आदर्श हमारे लिए है कि इतनी सारी चीजें रिलेशंस में होते हुए भी, क्योंकि जो हेवन को स्थापन करता है वो हार्मनी रिलेशनशिप को भी अपने साथ रखता है, और जो हार्मोनियस होता है वो हेल्दी होता है, और जो हेल्दी होता है वो हैप्पी होता है, जिसको आपने करके हमें दिखाया। तो मैं दीदी से कहूंगी, आपको आपसे सॉरी ब्रदर मंच से कहना पड़ रहा है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए आपने कहा हम आपके साथ और बैठेंगे, तो जोरदार ताली बजाए एक बार। बहुत सुंदर। तो अभी और आगे चलते हैं क्योंकि संपूर्ण आनंद तिवारी जी ने हमें बहुत सुंदर बताया, और अभी और आगे चलते हैं क्योंकि इतना महानुभाव हमारे मध्य बैठे और वाइस चेयरपर्सन खुद इस सभा को एड्रेस करें, इससे बड़ी बात और होती नहीं। और सबसे बड़ा चेयरपर्सन कौन बैठा है यहाँ पे, कौन बैठा है, सबका मालिक, कैसे किया था, सबका मालिक एक। तो और आगे चलते हैं, हमारे बीच में ब्रदर श्री, आज तो नाम ही बड़े अच्छे अच्छे हैं, असीम अभिताभ दास जी, है ना, असीम ही है उनकी ऑरा और औभा। आप ऑनरेबल मेंबर उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन कटक से यहाँ पर खास इस प्रोग्राम के लिए पधारे हैं, तो आपके भी मन के बहुत सारे उद्गार हैं जो इस प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आप हमारे मध्य रखेंगे। श्री असीम अमिताभ दास जी, हम अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों के इस प्यार वाले, आपकी ताली बजाना मतलब हम सबके लिए एक प्यार है, एक आभार है, तो जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। और ये तालियां स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही लाभकारक हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी हेल्दी जीवन के लिए तालियां बजाना डॉक्टर्स कहते हैं बहुत अच्छा है। हाँ, बजा दीजिए दोबारा ताली।
थैंक यू। मंच पर बैठे हुए मेहमान और मंच के सामने जो जूरी स्टॉप मेहमान बैठे हैं, सबको नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा ये दिक्कत है कि मैं सारे हिंदी में बोल नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा मुझे अकोमोडेट कीजिए कि मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा, जो मेरा रिटिन है उसको आपके सामने में पेश करूंगा। ऑनरेबल श्री जस्टिस बी डी राठी, चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन, द चीफ गेस्ट एंड द अट्रैक्शन ऑफ दिस सेशन, वैलिडेटरी सेशन, इज जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जागरी, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ आवर हाईकोर्ट, ओडिशा हाईकोर्ट, बिफोर हुम आई हैव अपीयर सेवरल टाइम्स, and everything was told about him. One thing was missing, he has the record disposal while his lordship was there in Odisha High Court during his tenure. And I am happy, I feel privileged to share the dais with his lordship. Brother Sri Sampurnananda Tiwari, BK Dr. Babulal Jadav, guest of honor, Rajyogini बीके पुष्पा जी, चेयरपर्सन ऑफ द जूरिस्ट विंग, राजरोगिनी बीके मनोरमा, बीके प्रदीप, कोऑर्डिनेटर बीके यासु जी, अदर डिग्निटरीज ऑफ द डायस, दिस इज अ वेरी प्राइड प्रिविलेज फॉर मी टू बी एसोसिएटेड विथ सच एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज प्रमोटेड peace, harmony over more than 140 countries across the globe. And I have no hesitation to tell you before tell you, Brother Nathamal ji, who is the instrumental and who has brought me here, and I am grateful to him that he got me associated with such an organization, and I am really proud of it. Today we have a topic, the Zurich Conference, and the organization's main theme is, when I change, the world changes. This is the theme which we are working out. The vision, God's vision for happy and lawful society. As it has been told, I am working in Human Rights Commission, State Human Rights Commission, at Bhubaneswar, Odisha State Human Rights Commission. The jurist wing of the organization has been working with sole object of spiritual education for enabling the legal fraternity to render real justice and promote moral values in the society. As all of us feel that there is a need of the hour to inculcate moral values in the process of administration of justice. Because all of us, we want that the social justice should prevail and equality should prevail. Topic of the today's session is God's vision, establish happy and lawful society. As all of us belonging to legal fraternity, in some way or other, we know that the origin of law is traceable from the time immemorial, when the men started living in societies. There was no concept of country or nation. When there is no written laws, the societies adopted religion and dogmas, faith to control individuals. The law and legal aspects were formed with the framework of religion. With the passing of time, when societies became nations, laws and legal systems evolved. On creation of nations, they adopted their own constitution, different statutes, like proclaiming sovereignty of nation, national property and personal liberty. Although many nations have dropped religion dogmas, but a few continue in the world, few continue to be dominated by religion, which are seen as a conflict between law and religion. As human civilization has developed in many countries, and they have adopted their respective constitutions, which is supreme above all the religions, like in our country in India. In Indian constitution, if I am permitted to say, most of us will know, 1948, 10 December 1948, the Universal Declaration on Human Rights, the Charter of Human Rights Declaration, when our very constitution was debated in the Constitutional Assembly, the Universal Declaration of Human Rights Whatever charter we have adopted, mostly they have been incorporated in our Indian constitution so far as it relates to the rights of the persons, part 3 of the constitution. Giving equality, liberty, fraternity, whatever it is there. Therefore, our constitution is such a kind of constitution, the preamble itself speaks what is there in the constitution is precisely stated in the preamble of the constitution. While dealing with the topic regarding happiness, we must admit that we are all creatures of God and we are also governed by rule of law. God has given us many things, the nature, everything God has given us. When a person takes birth, some vices are also there within ourselves. Vices like ego, anger, self-interest, everything. And we lack morality. At some places, sometimes, these vices, they dominate our activities and our attitude. If we give up that, then we can think of a happy society. I remember, if you go back to history, the great philosopher Plato has once said, seeking good for others, we find our own. If everyone is happy, it is obvious I am happy. If everyone is rich in the society, it is obvious I am rich. If everything is available to each and every person in the society, I am also entitled to that. I am also getting that. So in seeking good for others, we find our own. But though we know that these are the evils within ourselves, this is a disease kind of disease, but we do not want to cure it. And this is the organization which aims at curing all these diseases which are working within the human being, which are against the society. My humble request to all of you will be that when we are thinking of administration of justice, can we separate moral values, humanitarian values, and spirituality from the administration of justice? Always I used to say, every court, subject to correction, my Lord Javeri, every court which are established under the constitution or under any statute and dealing with the right of the people, so far as it relates to equality, social justice, each and every court is a human rights court, starting from Most Civil Court to Honorable Supreme Court of India. This is my view of the things. And if we want to give justice, equality to prevail, then the courts are to address with all kind of compassion, empathy, and with morality and keeping the spirituality in our mind. A great jurist was once said, if a judge can weep within himself, seeing the plight of the litigant, then the real justice can be delivered. If I am wrong, that's a different thing. I am subject to correction. But what I wanted to say is this. When we are thinking of happy and lawful society, the morality must prevail and the spirituality must prevail. Our duty must be inculcated while delivering justice to the people and the administration of justice. And one thing I want to, this is my concept of, my view. Religion and spirituality are two different things. To believe in God and to precipitate religion or to impose it, it are two different things. I am a believer of God. In whatever form it is, because I am creature of God and the destiny is being created by His Almighty. Therefore, while talking of the society with all kind of happiness and lawfulness, we must think ourselves that a society must be where everyone has equal right. Where everyone is smiling, we must dream of that society where everyone will be smiling and getting their legitimate dues. The Law Jurist Conference organized by Prajapati Brahma Kumaris must focus on the issue that everyone who are deserving must get the justice at the right time, at the right place. It was told before the session started. It was told by Sir that there is a, it is a dream for getting justice for years together, and this system has to change. And this, while working for this, this is a big organization. I think this is the only platform where the morality and spirituality prevails. We can do something to give justice to the deserving, to the poor, downtrodden, and the people of our country, citizens of our country, their real rights. With these words, and again I am expressing my thanks, because the time is already over, I am expressing my thanks to all of you for giving me patient hearing, and this great organization. Thank you all. Om Shanti, Jai Jagannath.
Bahut sundar. It's very beautiful insights which you shared with us, brother. Ek lawful or happy society kya hai? But rather than lawful, there is lot of in the jo speech mein tha, lot of things ke how to be the happy. So ek bar aap bhi happy ho jaiye, apne chehre par ek pyari si smile laiye, aur apne liye aur hamare brother श्री आसीम अमिताभ दास जी के लिए एक बार जोरदार ताली से बहुत बहुत थैंक यू आपका करते हैं. और हमारे मध्य ब्रदर सीए अमृत राज जी बैठे हैं, हमारी सिस्टर्स बैठी हैं, आप मंच पर आए हैं और हम सिस्टर्स को कहते हैं कि आप बुके से और प्लांट से हमारे सीए अमृत राज भाई को सम्मानित करें. सीए अमृत राज जी, एक बार हम जोरदार ताली बजा दें. और अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, क्योंकि और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और साथ में हमारे ब्रदर सीए अमृत राज जी, जो कि सीए हैं वर्तमान समय में, एक्स कंसल्टेंट नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली से आपका आना यहाँ पर पहली बार हुआ है. और हम आपसे भी चाहेंगे कि गॉड्स विजन एस्टेब्लिश अ हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी, आपके मन के उद्गार या आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आप हमारे मध्य शेयर करें.
ओम शांति. मैं मंच पे बैठे सभी बड़े जनों को और मेरे सामने बैठे सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ. मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रह्म कुमारी का, खास करके वारसी गुरुग्राम से नेतृत्व कर रही येसु दीदी और अमिता बहन का, जिन्होंने मुझे यह हाँ आने का न्योता दिया और यह अवसर दिया कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ बातें रख सकूं. भाइयों और बहनों, मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की है. कश्मीर जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है और कन्याकुमारी जहां पे स्वामी विवेकानंद जी इनलाइटेंड हुए, मैं दोनों जगह गया. बट यहां माउंट अबू माउंट ब्रह्मकुमारी सेंटर में ये मेरा पहला विजिट है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बचपन से हमने जो जाना और समझा उससे कहीं आगे जाकर मुझे समझ में आया कि पृथ्वी का स्वर्ग तो यहां पे है. जैसे ही हम सड़क के उस पार से शांतिवन की ओर प्रवेश करते हैं, ये दुनिया ही अलग है. ये इनफैक्ट ये दुनिया नहीं है, दुनिया से आगे हट के स्वर्ग है. और ये वो जगह है जहां पे आपको यह बोध हो पाएगा कि हम कौन हैं. आज के टॉपिक पे आते हुए, गॉड्स विजन एस्टेब्लिश ए हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी पे मैं चर्चा करना चाहूंगा. सबसे पहले स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, अध्यात्मवाद. मैं आज सुबह ही अपने ब्रह्म कुमारी के एजुकेशन वैल्यू विंग में गया हुआ था, जहां पे अध्यात्म के ऊपर कुछ ग्रेजुएट एंड पीजी एंड पीएचडी लेवल के कोर्सेज कराते हैं. तो वहां पे एक मैं ब्रदर से मिला, उनसे मैंने ऐसे ही डिस्कस करा कि अगर एक फॉर्मल वे में अध्यात्म को पढ़ना चाहें तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं. तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। आप सब जरा गौर से सुनिएगा, उनकी बातों को मैंने पेन डाउन कराया है। उनका कहना था कि ब्रदर, मोर यू स्टडी अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, द मोर यू स्टडी अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, यू विल कम टू नो डेट यू नो वेरी लेस अबाउट इट। इट्स सच ए डीप सब्जेक्ट। हम जितना भी ज्यादा अध्यात्म को पढ़ते जाएं, हमें पता चलता जाता कि हम तो बहुत कम जानते हैं। इन्हीं चीजों को स्टीवन आर कोवी, जो कि ऑथर हैं वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर बुक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के, उन्होंने एक अगली किताब लिखी द एट्थ हैबिट। उसमें वो कहते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज द सेंट्रल एंड मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द इंटेलिजेंस बिकॉज इट बिकम्स द सोर्स ऑफ गाइडेंस टू अदर्स। आगे चलते हुए वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल कोशेंट को अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो इट्स इक्वल टू इमोशनल क्वेसेंट प्लस इंटेलिजेंस क्वेसेंट। इमोशनल क्वेसेंट वो वैल्यूज हैं जो सबसे ज्यादा ऊपर वाले ने जानवरों को दिया है, और इंटेलिजेंस क्वेसेंट जो है वो हम ह्यूमन ने सबसे ज्यादा भर दिया है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में। बट इन दोनों के योग से जो बनता है वो है स्पिरिचुअल क्वेसेंट, और उसकी शक्ति जो है समझने की सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग्स में ही है। फ्रेंड्स, लॉ के सब्जेक्ट पे आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये कोई भी नई वस्तु नहीं है, ये तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन चला आ रहा है तब से है। एक सक्सेसफुल जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक डेवलप्ड सोसाइटी का हॉलमार्क होता है। आई रिमेम्बर कोटिंग फ्रॉम ऑनरेबल जस्टिस मिदास फेयरवेल स्पीच, ही वॉज ऑनरेबल हाईकोर्ट दिल्ली। उन्होंने एक बार अपने फेयरवेल स्पीच में कहा था, इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस बोथ द पार्टीज, द पिटिशनर एज वेल एज द रेस्पोंडेंट, दे बोथ नोज द ट्रूथ, इट्स द जज हु इज ऑन द ट्रायल। केस के तो डे वन से पता होता है कि भाई जो अपीलेंट है, जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है, उसका तत्व क्या है और जो रेस्पोंडेंट है उसका क्या है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ इसको जोड़ देते हैं तो हमें किसी भी जस्टिस को देने में आसानी होती है। आगे चलते हुए मैं बात करना चाहूंगा कि लॉ और स्पिरिचुअलिटी के बीच रिश्ता क्या है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्मवाद जो है, वो कानून से और हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी से डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड रहता है। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे समाज में स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा समाज जो है वो हैप्पी एंड लॉफुल होता चला जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन हम भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे मैक्सिमम जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बी इट महात्मा गांधी जी, वीर सावरकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब लॉ ग्रेजुएट थे जिन्होंने विदेशों में, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम इंग्लैंड जाके उन्होंने लॉ की डिग्रियां ली और वो वापस आए। बट उन्होंने ब्रिटिश के लॉ को तोड़ा। अब ये सारे लॉ के रक्षक, इन्होंने लॉ को क्यों तोड़ा, ये सवाल उठता है। तो देयर इज अ रीजन। ये जो ब्रिटिश लॉ था, इट वॉज नॉट अलाइंड विथ आवर इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। दैट इज द मेन रूट कॉज why they broke this British law. Law is meant for the society. Society is not meant for the law. Because jaise jaise society badalta hai, hame law mein bhi parivartan lana padta hai. That's why in 2016 sare jo bhi debt recovery ke related laws the, unko jod ke ek Indian bankruptcy code 2016 laya gaya. 2017 mein aise hi sare indirect taxes ko subsume karke GST laya gaya. अभी 1 जून से ही भारत पुराने 3 लॉ में संशोधन किए गए और हमारे को भारतीय न्याय संहिता मिला, और आगे आने वाले सत्र में अप्रैल 2025 से मोस्ट प्रोबेबली, एस एड्रेस बाय ऑनरेबल एफएम इन हर स्पीच मल्टीपल टाइम्स, डायरेक्ट टैक्स कोड भी आएगा। तो कानून जो है उसे समाज के हिसाब से बदलना होता है। इसलिए वी नीड टू रिफॉर्म आवर लीगल सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम as we try to spiritualize ourselves and nation. In my conclusion remark, I would like to conclude that we professional in various capacities are messenger with virtual mandate to transform society through spiritual values. So I urge and request all of us to devote some time to have a self-reflection to find relevance of spiritualism in our professional life as well as social upliftment of all the people. Thank you. Jai Hind.
बहुत सुंदर ब्रदर, आपने अपने विचार हमारे मध्य रखे और स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, इसका सही मायने क्या है और इसमें लॉ क्या है, वो आपने हमारे मध्य रखा. थैंक यू सो मच. जुल्म, अन्याय, छल कपट का नामो निशान मिट जाएगा. जुल्म, अन्याय, छल कपट का नामो निशान मिट जाएगा. वो दिन दूर नहीं जब हर स्थान मधुबन बन जाएगा. हर स्थान मधुबन बन जाएगा. जब मधुबन की बात करें तो देखिए आपके चेहरे पे अपनी प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो मधुबन जब बनेगा तो वो हैप्पी और लॉफुल सोसाइटी अपने आप बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा. तो हमारे बीच में हमारे लास्ट गेस्ट ऑफ ऑनर भी उपस्थित है, बीके डॉक्टर बाबूलाल यादव जी. आपका बायोडाटा हमारे पास बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें से जो हमको अच्छा लगा है, हम आप सबके मध्य पढ़ रहे हैं. पीएचडी ऑन लॉ, जस्टिस एंड सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पिरिचुअल एंड मॉरल प्रिंसिपल. आप लाइफ मेंबर हैं जूरिस्ट विंग के. और तीसरा, 40 साल से आप ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान जो आप ले रहे हैं वो समस्त विश्व को आप दे रहे हैं. तो आपके दिल में भी आज के इस गॉड्स विजन जो इतना सुंदर है, उसका क्या आपके मन में विचार है, वो हमारे मध्य रख रहे हैं बीके डॉक्टर बाबूलाल यादव जी. आपकी तालियां हमारे और मंच पे बैठे हमारे गेस्ट का, आपका खुद का सम्मान बढ़ाती हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे.
ओम शांति. सुप्रीम जस्टिस गॉड फादर श्री बाबा, डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, गॉड्स विजन टू एस्टेब्लिश ए पीसफुल, healthy and lawful society, that is civilized society. Civilized society किसको कहते हैं? Actually, जो देवी society है, divine society, that is civilized society. काल चक्र के हिसाब से सतयुग, त्रेता, दो युग के अंदर देवी देवताओं का राज्य था. 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न लोग थे जिनको देवता, देवी देवता कहा जाता था. देवर सिविलाइज्ड. ईश्वर को ऐसी सिविलाइज्ड सोसाइटी स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज सोसाइटी क्रिमिनलाइज हो गई है. रावण का काम है क्रिमिनलाइज सोसाइटी स्थापित करना और ईश्वर का काम है सिविलाइज सोसाइटी स्थापित करना. आज सोसाइटी बिकम क्रिमिनल, क्रिमिनलाइज. क्राइम की क्या डेफिनेशन है और क्राइम क्यों होता है सोसाइटी में? आज इतना क्राइम बढ़ गया है, क्राइम का मतलब अनराइटियस एक्ट. क्यों करता है कोई अनराइटियस एक्ट या क्राइम? उसका रूट काज है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. ये 5 विकार व्यक्ति से विकर्म कराते हैं, अपराध कराते हैं. क्यों कराते हैं? उसका रूट काज है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान. जब व्यक्ति अपने को शरीर समझता है तो शरीर समझते ही ये 5 विकार उसके मन पर हावी हो जाते हैं और उससे कोई न कोई विकर्म कराते हैं, अपराध कराते हैं. परिणाम स्वरूप समाज आपराधिक समाज या क्रिमिनलाइज सोसाइटी हो जाता है. इसका सोल्यूशन क्या है? सिविलाइज सोसाइटी, अर्थात जो एक्ट हैं क्रिमिनल एक्ट हैं वो सिविल एक्ट हों. एक्चुअली पूरा का पूरा जो कानून है वो 2 प्रोपोजिशंस के ऊपर आधारित है, आइदर टू डू और नॉट टू डू. टू डू प्रोपोजिशन है उसके आधार पर जो कानून है वो सिविल लो करो, नोट टू डू नहीं करो, इस प्रोपोजिशन के ऊपर आधारित है वो सारा का सारा है क्रिमिनल लो, जिसको प्रोहिबिटरी लो कहते हैं या पिनल लो भी कहते हैं। तो अब क्रिमिनल लॉ से सोसाइटी क्रिमिनलाइज हुई, मैंने क्राइम से क्रिमिनलाइज हुई, इसके आधार पर क्रिमिनल लॉ बना। सिविल लॉ सोसाइटी को सिविलाइज बनाता है। सिविलाइज का क्या आधार है? सिविल कैसे बना? सोलाइज से सिविलाइज बना। जब व्यक्ति का दैहिक दृष्टि होती है तो क्राइम कमिट होता है, जब उस व्यक्ति की आत्मिक दृष्टि होती है तो राइटियस एक्ट होते हैं, क्राइम नहीं हो सकता है। सिविलाइज में सोलाइज आत्मिक दृष्टि, देवी देवताओं की आत्मिक दृष्टि थी, सतयुग त्रेता दो युगों तक सोल कॉन्शियसनेस थे, ह्यूमन बीइंग सोल कॉन्शियसनेस था, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा समझता था, आत्मा देखता था, आत्मा ही समझ के कार्य करता था, तो उनके एक्शन राइटियस थे, अनराइटियस नहीं थे। लेकिन जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो उनके एक्शन अनराइटियस हो गए। अब सवाल है कि इसको राइटियस कैसे बनाया जाए, सोलाइज कैसे किया जाए। उसका बेस है स्पिरिचुअल प्रूडेंस, परमात्मा ईश्वर, उसका विजन सिविलाइज बनाने का। इसके लिए उसने दिया आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल प्रूडेंस। ज्यूरिस प्रूडेंस इज टोटली फेल टूडे। कहते हैं लॉ इज द मीन्स टू एन एंड, कानून हर समस्या का समाधान करता है, बट द प्रेजेंट लॉ डजंट एंड इवन ए सिंगल प्रॉब्लम। एक भी समस्या का समाधान आज तक आधुनिक जो कानून है, वर्तमान कानून है, राज्य का कानून है, उसके द्वारा समाधान नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सा लॉ समस्याओं का समाधान कर सकता है और क्यों कर सकता है? इसलिए कर सकता है कि लॉ के लिए कहा जाता है लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं का भी राजा है। क्यों है कर राजाओं का भी राजा? क्योंकि वो सुप्रीम सॉवरन के द्वारा निर्मित किया गया है। दैट इज स्पिरिचुअल लॉज। स्पिरिचुअल लॉज आर द किंग ऑफ द किंग्स। दे कैन चेंज द सोसाइटी, दे कैन चेंज द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग, और वो सिविलाइज बना सकते हैं। तो वो लॉ कौन दे सकता है? वो परमात्मा निराकार शिव। जब सोसाइटी क्रिमिनलाइज हो जाती है, विकारों का अति प्रभाव हो जाता है, कहते धर्म की अति ग्लानी हो जाती है, जैसा गीता में कहा है, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। वो समय चल रहा है अभी, धर्म की अति ग्लानी अर्थात सोसाइटी क्रिमिनलाइज हो गई है। तो परमात्मा अवतरित होकर के अब वर्तमान समय में आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक कानून देते हैं, और उस कानून को जब अप्लाई किया जाता है तो सोसाइटी सिविलाइज हो जाती है। वो कानून क्या है कि अपने आप को आत्मा समझो। आपने भी अभी कल के सेशन में सुबह देखा होगा कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर समझने से सारा गड़बड़ हुआ है। आज सभी लोग अपने को शरीर समझते हैं, आत्मा कोई भी नहीं समझता। तो परमात्मा के द्वारा जो स्पिरिचुअल लॉ आध्यात्मिक कानून या आध्यात्मिक ज्ञान जो दिया जाता है, उसके अंदर जो लॉ में क्या है इंक्लूड है, आत्मा की परफेक्ट नॉलेज, खुद परमात्मा की परफेक्ट नॉलेज, आत्मा परमात्मा का रिलेशन अर्थात राजयोग, उसकी याद कैसे किया जाए, उसकी विधि, तीनों कालों की नॉलेज, तीनों लोकों की नॉलेज, क्योंकि हमको यही नहीं पता है इतिहास के बारे में कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या था, सही इतिहास क्या था। हम 2500 साल तक के इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके आगे का इतिहास नहीं जानते। इसलिए क्या है कि हम यही नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते, अपने बाप को नहीं जानते, अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने जो फ्यूचर भविष्य है हमका, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको भी नहीं जानते। तो परमात्मा आकर के आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस सारी बातों को हमको स्पष्ट ज्ञान देता है कि वास्तव में तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये दुनिया का खेल कैसे चलता है, कैसे आकर के मैं इसको बढ़िया दुनिया बनाता हूं, ये दुनिया बदतर कैसे हो जाती है, रावण माया विषय विकार है वो कैसे दुनिया को खराब दुनिया बना देते हैं, और फिर मैं आकर के अच्छी दुनिया कैसे बनाता हूं, वो सारा नॉलेज देते हैं। दैट इज स्पिरिचुअल लॉ, और उसकी स्टडी स्पिरिचुअल प्रूडेंस या स्पिरिचुअल ज्यूरिस प्रूडेंस या कहें ओम शांति ज्यूरिस प्रूडेंस, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उसको नाम दिया ओम शांति ज्यूरिस प्रूडेंस। तो जब ओम शांति ज्यूरिस प्रूडेंस अप्लाई होती है तो सोसाइटी चेंज हो जाती है। तो सोसाइटी को चेंज करने का आधार है स्पिरिचुअल लॉज, आध्यात्मिक कानून, अर्थात हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक हो, हम आत्मा समझें, आत्मा समझ के ही हम कर्म करें, दूसरे को आत्मा देखें, खुद को आत्मा समझें और आत्मिक स्मृति में रह करके कर्म करें, तो हमारे कर्म सुकर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे, डिवाइन कर्म होंगे और सोसाइटी सिविलाइज होगी। तो सिविल सोलाइज, सोलाइज तो सिविलाइज बना, मतलब आत्मिक दृष्टि अगर है तो सिविलाइज है, अगर देहिक दृष्टि है तो क्रिमिनलाइज है। देह समझते ही सब गलत होता है, पहला देह समझते ही स्त्री पुरुष का भान आता है, फिर उसका भान आता है सामने वाला किस देश का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस जगह का है, वो सारी बातें वो आती हैं तो बायस हो जाता है, और बायसनेस आते ही कर्म विकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, और इसलिए वो पाप कर्म या विकर्म या अपराध के कारण आपराधिक समाज बन जाता है, उसको परमात्मा देवी समाज बनाता है या सिविलाइज सोसाइटी बनाता है। अब थोड़ा सा इनका अंतर देखें कि ये जुरिस्प्रूडेंस, जो प्रेजेंट जुरिस्प्रूडेंस है जिसका आप स्टडी करते हैं, और एक स्पिरिचुअल जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें क्या फर्क है। तो सब्जेक्ट मैटर जो जुरिस्प्रूडेंस का होता है वो लॉ होता है, स्पिरिचुअल जुरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है स्पिरिचुअल लॉ, दोनों का लॉ है, लेकिन यहां लॉ है जिसको आप देख रहे हो, उस लॉ का इफेक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी बिकम क्रिमिनलाइज, लेकिन स्पिरिचुअल लॉ से सोसाइटी बिकम विल बिकम सिविलाइज्ड है। तो सब्जेक्ट मैटर है लॉ, सब्जेक्ट मैटर है स्पिरिचुअल लॉ। ऑब्जेक्ट क्या है, वहां पर जो पर्सनल जिस व्यक्ति पे लागू किया जाता है, दैट इज फिजिकल पर्सन, कॉर्पोरियल पर्सन, शारीरिक व्यक्ति के ऊपर वो कानून लागू हो रहा है, वो काम कहते हैं कि वो एक्ट कर रहा है, वो कोई व्यक्ति शरीर कर रहा है और शरीर को ही ट्रीट करते हैं, शरीर को ही डील करते हैं, शरीर को ही पेनलाइज करते हैं, बॉडी नहीं कर रही है, बॉडी के अंदर बैठी हुई चेतन शक्ति आत्मा कर रही है, पर यो कानून क्या समझ रहा है कि ये शरीर कर रहा है, इसलिए शरीर को ट्रीट करता है, शरीर को डील करता है, जेल भेजेंगे किसको, शरीर को भेजेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। और स्पिरिचुअल लॉ क्या करता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, एक इनकॉर्पोरियल पर्सन, आत्मा चेतना, वो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं तुम वो हो, ये नहीं हो, वो आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, पर कानून क्या समझता है, इस शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है, इसलिए वो शरीर को ट्रीट कर रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। हम लोग जाकर के अभी बताया भाई ने कि जेल के अंदर जाकर के करते, मैं भी 2-3 साल तक जेल में जाकर के मैंने भी उनको बदलने की कोशिश की, क्रिमिनल्स को स्पिरिचुअल लॉ के द्वारा, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो वो परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व में, परिवर्तन हो जाता है किससे, स्पिरिचुअल लॉ से। तो व्यक्ति को शरीर समझने से उसको चेंज नहीं कर सकता कानून, इसका रिजल्ट नहीं आता समाज के अंदर, लेकिन आत्मा को व्यक्ति समझने से है, इनकॉर्पोरियल पर्सन उसको समझते हैं ना, जो आत्मा को व्यक्तित्व समझते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो स्पिरिचुअल लॉ या स्पिरिचुअल प्रूडेंस, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है स्पिरिचुअल पर्सन, इनकॉर्पोरियल पर्सन, इसका कॉर्पोरियल पर्सन फिजिकल पर्सन, दोनों में डिफरेंस, वो उसको ट्रीट करता है, उसको डील करता है। ट्रीटमेंट या इलाज किसका करता है, शरीर का करता है, जबकि शरीर तो करता ही नहीं है, डुअर इज इन एक्चुअल इनफैक्ट बॉडी इज नॉट द डुअर, डुअर इज द सोल, लेकिन ट्रीटमेंट बॉडी का कर रहे हैं, तो कैसे उसका रिजल्ट आएगा, सही आ ही नहीं सकता, इसलिए ये लॉ चेंज ला ही नहीं सकता। एक भी प्रॉब्लम का समाधान इस लॉ से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लॉ जो है व्यक्ति को समझ ही नहीं, जो कर रहा है उसको तो ट्रीट ही नहीं कर रहा, तो रिजल्ट कैसे आएगा, तो उसका आ ही नहीं सकता रिजल्ट इस लॉ का। स्पिरिचुअल लॉ रिजल्ट क्यों देता है, क्योंकि एक्चुअली जो स्पिरिट है, सोल है, दैट इज डूअर, वही करने वाली है। तो उसको अगर आप उसको महसूस कराओगे कि आप आत्मा हो, आत्मा का धर्म क्या है, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, उसको आत्मा समझते ही ये चीजें ऑटोमेटिकली उसके लाइफ में इमर्ज होंगी, व्यवहार में इमर्ज होंगी और उसके एक्शन में आएगी, और एक्शन की वजह से उसके कर्म चेंज होंगे, क्रिमिनलाइज से सिविलाइज कर्म हो जाएंगे, तो उसमें टोटली चेंज आ जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है जेलों के अंदर जाकर के, अलवर में हम सेंट्रल जेल में जाते थे, करीब 2 साल तक हमने किया, बहुत सारे लोगों को परिवर्तन हुआ, और ये सभी जेलों को डायरेक्शन मिला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाए जाने वाला जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह हर जेल के अंदर कैदियों को दिया जाए, जिससे उनके अंदर परिवर्तन आए, नैतिकता आए, वैल्यूज आए, इसलिए वो नॉलेज सब जगह दिया जाता है। वो क्यों चेंज कर देता है? क्योंकि वो एक्चुअल पर्सन को डील कर रहा है, आत्मा को डील कर रहा है। अब सवाल यह है कि ये कानून कौन बनाता है? जो स्थूल कानून है जिसको आप स्टडी करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, ये लॉ मेकर कौन है? लॉ मेकर होना चाहिए एक ट्रू सॉवरन, संप्रभु निर्माण करता है कानून का। अच्छा छोटो, तो ये जो सॉवरन है ना, ये सॉवरन ट्रू सॉवरन नहीं है। सॉवरन कौन होता है? जो अपने मामले में जो चाहे जो करे, अच्छा है पॉजिटिव सेंस में। जैसे मैं मेरे मामले में, मेरे अंदर बुराई है, मैं उसको खत्म करना चाहूं तो कर दूं। सॉवरन के लिए कहते हैं कि सॉवरन इज एसेंशियल, सॉवरन इज अनडिविजिबल, पावर ऑफ सॉवरन इज अनडिविजिबल, अनलिमिटेड। तो मेरी अनलिमिटेड पावर है, तो मैं संप्रभु हूं, अर्थात सही करने के लिए। लेकिन आज हमारे पार्लियामेंटेरियन है, उनकी अनलिमिटेड पावर क्या है कि वो खुद ही सॉवरन नहीं है। अब वो खुद ही अपने मामले में ही सॉवरन नहीं है। आज देख रहे हो आप अपराधों के अंदर ऐसे बड़े बड़े अपराध, रेप जैसे अपराध कमिट कर रहा है पार्लियामेंटेरियन, वो संप्रभु कहां है? वो कानून बनाएगा, वो कानून कैसे आपका सही कानून हो सकता है? वो रिजल्ट कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए सुप्रीम सॉवरन शिव बाबा, परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा बनाया हुआ कानून वो सही माने में ट्रू लॉ है, ट्रू सॉवरन के द्वारा बनाया हुआ कानून। वो कानून अपने आप अपना रिजल्ट दिखाता है। तो लॉ का जो विजन है परमात्मा का, एक सिविलाइज सोसाइटी, बेटर सोसाइटी, डिवाइन सोसाइटी, वो उसके स्पिरिचुअल लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश हो सकती है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। आप इसको विस्तार से समझने के लिए अपने नजदीक के सेवा केंद्र पर जाकर के और इसको 7 दिन तक आप समझ। ओम शांति।
थैंक यू सो मच ब्रदर। आपके दिल में बहुत सारी चीजें हैं कि हम, उनका मन है कि आप इसको पूरा समझ के चले ही जाएं, कुछ छोड़े नहीं। तो उन्होंने इस चीज की साधना की है और जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन उन्होंने हर चीज को, लॉज को, स्पिरिचुअल लॉज से किया है, तो यही मुझे समझ में आया है, लव और लॉ का बैलेंस हो, दूर की नजर की बजाय खुद को देखने का बैलेंस हो। ठीक है, बस खुद को देखें और ये बैलेंस करें और आगे चलते जाएं। थैंक यू सो मच ब्रदर बाबूलाल यादव जी, जिन्होंने इतना सुंदर अपना बात हमें लॉज के ऊपर बताई कि स्पिरिचुअल लॉज और जो दुनियावी लॉज हैं उसमें किस तरह का अंतर है। तो जैसे कि भाई ने बताया, राजयोगा मेडिटेशन के लिए हम जाएं, तो हर प्रोग्राम में हमारा मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम मेडिटेशन को जरूर लास्ट में करेंगे, पर उससे पूर्व हम चाहेंगे हमारे बीच में इस विंग के, जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन बैठे हैं और बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स हम सभी को दें, अलौकिक अनुभवों की गुलकंद लेकर, परमात्म पुष्प रहे गुलाब, आदरणीय राजयोगिनी दीदी पुष्पा जी, आपके रूहानी आभा मंडल से सज गई ये परमात्म महफिल लाजवाब लाजवाब। तो ऐसे हमारे पुष्पा दीदी को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। आप आए और अपनी ब्लेसिंग्स, अपने दिल के उद्गार, क्योंकि यहाँ से हम क्या लेकर जाएं, क्या ऐसी साधना आपने की है जो आज आप इस विंग के चेयरपर्सन हैं, हम चाहेंगे आप अपनी बात, अपनी ब्लेसिंग्स हम सबको दें।
ओम शांति। सब बोलेंगे ओम शांति। आज का हमारा ये वैलिडिक्टरी सेशन है और बहुत सार आपको मिल रहा है। तो पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे सभी रिस्पेक्टेड स्पीकर्स, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए, विशेष रूप से हमारे उड़ीसा से आए हुए ऑनरेबल जस्टिस, इनके लिए एक ताली तो विशेष बनती है। एच एस जावेरी जी, और आप सभी विशेष मेहमान भाई और बहनों, आज के विषय में विशेष है कि ऐसा समाज लाने के लिए जिसकी चर्चा हम दो तीन दिन से कर रहे हैं कि वो हेल्दी भी हो, लॉफुल भी हो, गॉड्स का क्या विजन है, गॉड क्या चाहते हैं, वो समाज को कैसा बनाते हैं, आपने सोचा? क्योंकि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि संसार का जो आरंभ में गीत भी सुना, मालिक एक है, वो क्रिएटर है, हम सब उसकी क्रिएशन है। क्रिएटर हमेशा अपनी क्रिएशन के लिए अच्छा से अच्छा, बहुत अच्छा हमेशा सोचता भी है और करता भी है। आप सब भी अपने छोटे छोटे परिवार के अनुभवी हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी संतान को क्या अच्छा से अच्छा मिल सकता है, और फिर चाहे किसी की समर्थ हो भी या नहीं हो, फिर भगवान परमात्मा तो इस सृष्टि का मालिक है और सागर है, ऑलमाइटी है, समर्थ है, तो क्या उसने ऐसी दुनिया बनाई होगी जैसी आज आप देख रहे हैं, जिसमें शांति ही शांति भी गुम हो गई, बाकी तो सब गुम हो ही गया। अंदर से हमारी आत्मा कितनी खाली हो गई, जो हमें बाहर से सब कुछ जोड़ने की जरूरत के कारण से लॉ भी टूट गए, हेल्दी भी नहीं रहा समाज, पीस भी नहीं रही। तो मैं आपके सामने, क्योंकि भगवान ने जब दुनिया बनाई थी तो बहुत सुंदर थी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ था, और कहा भी जाता है प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जैसे जैसे प्योरिटी जाती गई, जब पहले सतयुग था, फिर त्रेता, और फिर द्वापर कलयुग, और आज आप देख रहे हैं। परंतु ये अंडरस्टूड है, घोर अंधेरी रात के बाद सुबह ही आती है, और जब सुबह आती है तो मनुष्य को जागना पड़ता है। आज से जब इस संस्था की स्थापना हुई 88 वर्ष पहले, तो इसके साकार संस्थापक को सबसे पहले एक दृश्य दिखाई दिया, उन्हें साक्षात्कार हुआ, 1936 की ये बात है, और उन्होंने क्या देखा, वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े हीरों के व्यापारी थे, गृहस्थी थे, समाज में बड़ी मान शान थी, प्रतिष्ठा थी, तो उन्होंने अचानक देखा कि किस प्रकार से आने वाले समय में एक ये ऐसा दृश्य होगा। तो सबसे पहले उनको सिविल वॉर का दृश्य दिखाई दिया, आप समझ ही सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने देखा नेचुरल क्लैमिटीज, बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बहती जा रही हैं, और फिर उन्होंने एक दृश्य देखा आग के गोले फट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि आग के गोले क्या है ये, और वो बस उनके अंदर से अंतरात्मा बोली, उस समय कोई बॉम्ब की बात इस दुनिया में नहीं थी, उस समय लैब में एक रिसर्च चल रही थी, और वो आगे चलकर क्या रूप लेगी ये साइंटिस्ट भी नहीं जानते थे। परंतु जब वो रिसर्च उनकी थोड़ी हो चुकी और वो एक चीज जो तैयार हुई 1945 में, नागासाकी हिरोशिमा जापान में उसे यूज किया गया जो बेबी बॉम्ब था, और उसके डालने से जो नुकसान हुए आप सब जानते हैं, इस बात को अवश्य पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। उसके पेशेंट्स अब तक भी कोई कोई है हॉस्पिटल्स में पड़े रहे, कितने तो मर गए। वो तो एक ट्रायल थी छोटे से बेबी बॉम्ब की, परंतु पिताश्री साकार रूप में जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा सुप्रीम पावर ने, निराकार जो एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, उन्होंने ये पिताश्री को इस आने वाले समय का एहसास कराया कि वो दुनिया क्या होगी और आज की दुनिया जो है उसका आगे भविष्य क्या है। क्योंकि ये आप सभी अनुभवी भी होंगे, सुनते भी हैं, मानते भी हैं, जब कोई बात की अति हो जाती है तो अवश्य परिवर्तन होता है, अवश्य एक नया दौर आता है। और अब वही ही स्थिति समाज की चल रही है। और तुरंत उसके बाद उन्होंने क्या दृश्य देखा कि चमकता हुआ एक सितारा धरती पर उतरता है आकाश से नीचे, और वो एक शहजादे का रूप ले लेता है। सितारा और उतरता है, शहजादी का रूप ले लेता है और उतरता है। ऐसे कुछ सितारे उतरते जा रहे हैं चमकते हुए, और वो प्रिंस प्रिंसेस देवी देवताओं के रूप में दिखलाई दे रहे हैं। वो सितारे मीन्स आत्माएं हमारी चमकती हुई जो इस मस्तक के बीच में है, क्योंकि शरीर तो धरती पर आकर मिलता है। तो उन्हें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आने वाला संसार ये होगा, और उस दुनिया को बनाने वाला और लाने वाला अब के समय में वो सुप्रीम पावर है। और तब ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इसी ही कार्य में रहना है। और फिर उन्होंने उनके डायरेक्शन प्रमाण, पिताश्री ने परमात्मा सुप्रीम पावर के डायरेक्शन प्रमाण इस कार्य को करना आरंभ कर दिया। और बहुत से फिर धीरे धीरे जुड़ते गए, और तब ही उसी समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, स्थापना हुई। और आज आप देख रहे हैं वह ईश्वरीय संदेश कि पवित्रता से सुख और शांति आएगी, और एक ऐसी लॉफुल और हेल्दी सोसाइटी दुनिया बन जाएगी। आज सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र हैं, 140 देशों से भी ऊपर। तो प्यारे भाई बहनों, निश्चित है, क्योंकि ये भी निश्चित है कि ऐसी दुनिया आएगी और शीघ्र आएगी, और हम सबके द्वारा ही आएगी। और उसके लिए हमें परमात्मा की ही उस प्लानिंग को समझ करके उसे फॉलो करना होगा। दूसरी विशेष बात, परमात्मा ने हमारी वो रियलिटी सुनाई, हमारी रियल आइडेंटिटी की इंट्रोडक्शन दी, कारण सुनाया कि ऐसी हालत क्यों हुई, जबकि मानव खुद नहीं चाहता, खुद नहीं चाहता। जो क्राइम करता है उससे भी पूछिए, वो कहते हैं मैं चाहता तो नहीं था, ये क्या हो गया। बाद में उसको पश्चाताप होता है अंदर ही अंदर, लेकिन उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सजा ही है बस। भगवान हमें वो सोल्यूशन देता है, करने से पहले ही दे देता है, और करने के बाद भी किसी का कर्मिक अकाउंट ऐसा है तो उसका भी देता है कि हे आत्माएं, आप वास्तव में अपनी रियल आइडेंटिटी में, ये शरीर नहीं एक आत्मा है, जो भाई यादव जी बड़े अच्छी तरह से आपको अभी ही पक्का कराना चाहते थे, हाँ? और हो ही रहा होगा, दो तीन दिन से इस बात पर बहुत चर्चा भी चल रही है, जो और बातें हैं वो भी आपको इसी बात पर लाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से है कि हम पहले अपनी रियल आइडेंटिटी को हमेशा याद रखें। जैसे अगर आपको कोई एक्टिंग करने के लिए रोल दे दिया जाए, किसी हीरो को एक्टिंग करनी होती है, वो ये नहीं भूल जाता है कि मैं हूं कौन, वो ये नहीं सोच लेता मैं राजा ही हूं क्योंकि राजा का नाटक कर रहा हूं, वो समझता है मैं एक साधारण प्राणी हूं, घर जाऊंगा मेरे संबंधी घर में बैठे हैं। तो अपनी रियलिटी को उसे बोलना नहीं पड़ता, लेकिन उसको कॉन्शियस है उस चीज की। ठीक इसी तरीके से हम अपनी कॉन्शियस जो हमारी है, वो क्या हमने अपनी उस रियल आइडेंटिटी की है, वो ही स्मृति में ना होने के कारण से अभी हम इसी स्मृति कॉन्शियस में बैठेंगे कि मैं एक बिंदी आत्मा हूं, परमात्मा की संतान है। ऐसा समाज इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से ही संभव है, ताकि हम अपनी रियलिटी को समझें, उस कॉन्शियस में आए, सोल कॉन्शियसनेस में, और बॉडी कॉन्शियसनेस जिसने नीचे लाया, डाउनफॉल हुआ, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, कर्म करते भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते भी और अच्छी निभाएंगे, क्योंकि वेस्ट थिंकिंग चली जाएगी। वो ऑलरेडी आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, मुझे इस समय बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ऐसा जो आत्मा की मूल नेचर है, वो प्योरिटी एंड पीस है, और वो धीरे धीरे हम अपनी उस रियल कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो प्योरिटी और पीस हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा असंभव या मेहनत नहीं है। प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ अनुभव भी कर रहे हैं, तभी आप यहाँ की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि उस वातावरण का आधार है प्योरिटी। तो वो दुनिया आने में अब देर नहीं है, और वो आकर ही रहेगी, और शीघ्र ही हो जाएगी। और आप हम सब ऐसे ही समाज में, ऐसे ही संसार में रहने वाले प्राणी सुख और शांति का जीवन जिएंगे। ओम शांति। ये दस का सलाम देना, मैंने ठीक नहीं बोल, पेपर बोल। हमारे चीफ गेस्ट मैं शायद उस टाइम पूरा नाम नहीं बोल पाई, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, रिस्पेक्टेड ब्रदर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जावेरी जी, आपके लिए हम विशेष ताली बजाएंगे क्योंकि आप खास इस सेशन के लिए आए हैं। जोरदार ताली बजाइए और आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच।
जैसा कि पुष्पा दीदी जी ने बताया और हमारे चीफ गेस्ट हमारे मंच पर रहे, हमको पूरा सुना आपने, तो आपका बहुत बहुत, अगर हम चाहें तो एक बार आप अपनी जगह पर खड़े भी हो जाएंगे तो हमारे लिए एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ में आपका बहुत बहुत थैंक्स भी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं हमारे लता दीदी जी जो नेशनल अपने यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराना, आपके सानिध्य में हम सब जो कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। और पुष्पा दीदी भी आपको मिल रहे हैं और हमारे जो बाकी गेस्ट भी हैं, हम चाहेंगे पुष्पा दीदी लता दीदी हमारे उनको भी आप ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित करें। और जो हमारे यहाँ पे खड़े हैं आप सब दो तीन मिनट और आराम से इस प्रोग्राम को देखें क्योंकि मेडिटेशन है और थैंक्स है और उसके बाद 8:30 बजे बहुत सुंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने बहुत प्यारा कल्चरल तैयार किया है, वो भी आप देखेंगे। तो पुष्पा दीदी जी और हमारे राठी भाई जी और लता दीदी जी और साईराम अय्यर जी जो इंटरनेशनल फेम के सिंगर हैं, वो भी कल्चरल में रहेंगे। कल हमने उनको सुना, बहुत सुंदर वो गाते हैं, तो वो भी रहेंगे। और अभी हमारे सभी गेस्ट को पुष्पा दीदी, हमारे लता दीदी, राठी भाई जी के आप खास समय निकालकर हमारे मध्य पहुंचे तो इसके लिए भी। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि हमारे प्रदीप भाई जो हैं, वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए हम उन्हें बुलाना चाहेंगे कि आप जो हमारे मंच पर बैठे हुए गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, उनका भी आप थैंक यू करेंगे। एडवोकेट हैं आप और मेंबर हैं जूरिस्ट विंग के।
ओम शांति। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, गॉड्स विजन एस्टेब्लिश है हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी, इस पर परिचर्चा भी हुई और हमारे विद्वान विद्वान वक्ताओं का आपस में परिचय हुआ, अधिवक्ताओं का आपस में परिचय हुआ। और अब बारी है परिणाम की। परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम अपने आप को परिपूर्ण करने का, अपने आप को परिपक्व करने का, ये परिणाम की आवश्यकता है। यहाँ बैठा हुआ, सभा में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये अनुभवी है कि मन में चलने वाला तूफान, मन में चलने वाला चक्रवात बाहर के चक्रवात से कई गुना शक्तिशाली है। तो उस चक्रवात को दिशा देना बहुत जरूरी है। यदि समय पर दिशा नहीं दी गई तो बड़े आपराधिक कारण बन जाते हैं। जैसे कि कलकत्ता जो मर्डर केस हुआ, वो एक इसी का एक उदाहरण है जिस पर आजकल बहुत गहरी चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुत समय से चल रहे मन में तूफान को व्यक्ति यदि दिशा दे देता है तो सही परिणाम है, नहीं दे पाता है तो वो परिणाम बहुत ही नेगेटिव आते हैं। तो हम सबका एक संकल्प होता है कि आप अपने आप को परिवर्तन करने का, अपने आप को, अपना एक सपना होता है कि कुछ न कुछ हम गुण धारण करें। तो एक छोटी सी कविता है, उसके माध्यम से हम इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके सार को समेट लेंगे। बातों से न बात बनेगी, करके कुछ दिखाना होगा। बातों से न बात बनेगी, करके कुछ दिखाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूरज से पहले उठना होगा, अपने कार्य में जुटना होगा। निश्चित ही पाएंगे सफलता, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को झुकना होगा, हर मंजिल को झुकना होगा। जिसकी आज कल्पना करते, जिसकी आज कल्पना करते उसी समय को लाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। हमको खुद से लड़ना होगा, हमको खुद से लड़ना होगा, खुद ही खुद को पढ़ना होगा। हिम्मत कर हमको आज ही पहला कदम बढ़ाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। अब हम कार्यक्रम की जो परंपरा है धन्यवाद ज्ञापित करने की, उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शिव बाबा का धन्यवाद करते हैं जो सुप्रीम जज हैं, हमारे परम पिता परमात्मा शिव, उनका धन्यवाद करते हैं। उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम सफल और संपन्न हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दादी डॉक्टर रतन मोहिनी जी का जो सेंचुरियन है, 100 साल होने के बावजूद हमारे इनॉग्रल सेशन में आए, सबको अपने आशीर्वाद दिया, मीठी दृष्टि दी, शुभकामनाएं दी, दादी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद हम हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र झवेरी जी, फॉर्मर चीफ जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक का, उन्होंने अपना समय दिया, बहुत ही कम समय में वो अहमदाबाद से यहाँ आए और अभी उनको जाना भी था, वो चले भी गए हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सत्य, ईमानदारी, करुणा, दया, ये गुण हम न्याय प्रणाली में यदि डालते हैं तो हमारी न्याय प्रणाली को सुधार करने में हमारे सहयोग मिलेगा। इसके बाद हम दीदी पुष्पा जी का, जो कि हमारे चेयरपर्सन है जूरिस्ट विंग की, बीके दीदी पुष्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बताया कि क्रिएटर अपनी रचना को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। दीदी ने बताया कि 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी कैसे लॉफुल सोसाइटी निर्माण करने का अपना कार्य निरंतर जारी रखती है, रख रही है। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीडी राठी जी, जो कि हमारी विंग के जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभ्य और विनम्र स्वभाव से सबका दिल जीत लेते हैं और उन्होंने गीता के ऊपर बहुत अच्छा सेशन लिया। आपने बताया समापन सत्र नहीं है ये तो नवीन सत्र है, क्योंकि इसके बाद हमारे में कुछ न कुछ नवीनता आती जाए। राठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर श्री संपूर्णानंद तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो चेयरपर्सन स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलान ट्रिब्यूनल बिहार के पटना से आए हैं। उन्होंने यहाँ समय दिया अपना और बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, हमें बताया हम अपने को सेवक से जब स्वामी समझने लगे तो हमारी जो न्याय प्रणाली है या हमारे व्यक्तित्व में गिरावट आने लगी। कोर्ट में वैवाहिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, इसका भी मुख्य कारण क्या है? हमारा अहंकार। यदि हम अपने अहंकार को विनम्रता में बदलें तो परिवार भी नहीं टूटेंगे और परिवार से बनता है समाज और समाज से बनता है देश। तो भ्राता श्री संपूर्णानंद तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर श्री अमृत राज जी, जो कि सीए हैं, उन्होंने ओआरसी से दिल्ली से आकर हमें अपना समय दिया। वो एक्स कंसल्टेंट नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के कार्यकर्ता रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कितना अच्छा शब्द दिया, उन्होंने आध्यात्मवाद का शब्द दिया हमें। आज बाजारवाद का शब्द ज्यादा सुनाई देता है, क्योंकि हम बाजारवाद से ही घिरे हुए हैं। हर चीज, हर प्रोडक्ट की इतनी पब्लिसिटी की जाती है कि वो हम खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भाई साहब ने बताया कि आध्यात्मवाद को, जो कि एक गहरा सब्जेक्ट है, यदि हम उसको पढ़ें तो आगे चल के बहुत ही परिवार को टूटने से बचा सकते हैं और समाज को संगठित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भ्राता जी अमृत राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीके बाबूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि प्रिंसिपल लॉ कॉलेज झालावाड़ से रिटायर्ड हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाबूलाल जी ने बताया स्पिरिचुअल लॉ सोसाइटी की को सिविल लॉ सिविलाइजेशन बनाने में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है हमें, आत्मा और परमात्मा प्रकृति का, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम उसको अमल में लाते हैं तो हमारा जो समाज है वो एक लॉफुल समाज बन जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, स्पिरिचुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए भाई साहब ने बताया, तो बाबूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बी के मनोरमा दीदी जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो कि मेडिटेशन करवाएंगी हमें बाद में। और बी के ईशु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहावत है, बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह, तो ईशु बहन बहुत अच्छे से मंच का संचालन कर रही थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुन्नी दीदी का, देव भाई का, जिन्होंने अकोमोडेशन की सुविधा आप सभी को दी। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ लता दीदी जो कि हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, श्रद्धा दीदी जो कि हमारी मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने विंग्स को इतने अच्छे से संभाला है। आप सभी के लिए जो व्यवस्थाएं हुई हैं लता दीदी और श्रद्धा दीदी का, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं सभी विभाग वालों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसमें कि बिजली विभाग, साउंड विभाग, वीडियो विभाग, किचन, ट्रांसपोर्ट, सभी विभाग का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं मधुबन के हर भाई बहन का धन्यवाद करता हूं, जिन्हों की शुभ भावना और शुभ कामना से ये कॉन्फ्रेंस सफल और संपन्न हुई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आप सबका, ऑडियंस में बैठे हुए, सभा में बैठे हुए एक एक भाई बहन का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब न होते तो हम भी न होते। तो आप सब आए, यहाँ आए, आपने अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हम सब जूरिस्ट विंग की ओर से प्रदीप भाई को, कि आपने सबका धन्यवाद बहुत अच्छे से किया। तो एक बार प्रदीप भाई जी के लिए भी हम जोरदार ताली बजाएं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि राजयोग एक आर्ट है जिसको ART कहते हैं। तो मेडिटेशन क्या है, पुष्पा दीदी जी ने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया और भी हमारे सभी साथियों ने उसको क्लियर किया। तो अब वो पल है, आप इतनी देर से बैठे हैं लेकिन जब इस पल को एंजॉय करेंगे तो वो पल यही कहता है कि मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। तो परमात्मा कौन है, क्या है, ये सब हमने जाना। अब हम अपने अवेयरनेस में जाएं, अपने को रियलाइज करें। और T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होगा वो हमको मनोरमा दीदी हमारे मध्य बैठे हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि आप बहुत ही धैर्यता से, असीम प्यार से आप बैठे हैं और उसी प्यार से आपको उस परमात्मा की प्यार की ओर लेकर जाएंगे हमारे सीनियर राजयोगा टीचर हैं, मेंबर हैं जूरिस्ट विंग के, मनोरमा दीदी, जो रतलाम से यहाँ पर आए हैं।
ओम शांति। सर्वोच्च न्यायाधिपति परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उन्हीं के ही अनन्य रत्न समस्त मंचासीन भाई बहने एवं सभा में उपस्थित प्रभु प्यारे रत्नों, आप सभी 3 दिनों से हम कौन हैं और किसके हैं ये सुन रहे हैं। हम सब इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और किसकी संतान है, उस परम प्रिय परम पिता परमात्मा की संतान है। जो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, गुणों के सागर हैं और शक्तियों के सागर हैं। तो हम उनके बच्चे कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए? उन सब गुणों से भरपूर। मगर आज देखिए, मानव दुखी है, अशांत है, परेशान है, हैरान है। तो कोई कहेगा उसके बच्चे हैं? राजा का बच्चा कौन होगा, राजकुमार या भिखारी? राजकुमार। ठीक वैसे ही उस परम शक्ति परमात्मा के हम सब बच्चे इन गुणों के सागर हैं। ये आपने दो दिन समझा। अब उन गुणों को हम अपने स्वरूप में ले आए और अपने संस्कारों को हम इतना श्रेष्ठ बना लें। आप सभी ने यहां तीन दिन आए, उसके पहले जब आप आरती गाते थे तो उस आरती में ये गाते थे, मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों का दास हूं। रोज आरती में गया, मैं कामी कपटी पापी नीच हूं। तो क्या करते चले गए, वैसा ही बनते गए, क्योंकि हमने लेवल पक्का कर लिया कि हम तो ऐसे ही हैं और आप ऐसे हैं जो मंदिर में हैं। लेकिन आज आप सभी इस सभा में बैठे हैं और परमात्मा की संतान हैं, तो भगवान की संतान कैसी होगी? हर पिता का बच्चा कैसा होगा? वो उसके नैनों का नूर होगा, उसके मस्तक की मणि होगा, उसके दिल का टुकड़ा होगा और अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। तो आप और हम सभी जो कुछ सुना आज, अब उसको अपने संस्कार में लाएंगे। सिर्फ दो मिनट के लिए मेडिटेशन अभ्यास में मैं जैसा आपको बोलूंगी वैसा आपको अपने उस स्वरूप को अनुभव करना है और उसको स्थायी बनाना है। ओम शांति। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा राजा, अपने मन मंत्री और इन समस्त कर्म इंद्रियों की अधिकारी हूं। मैं अपने इस मुख रूपी कर्म इंद्री को ये आदेश देकर बड़े प्यार से चलाना सीख गई हूं कि अब मुझे अपने मुख से मीठा बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है और सुखदायी बोलना है। मेरा हर बोल किसी भी आत्मा के प्रति वरदान साबित हो। मुझे इस सृष्टि जगत में समस्त अपने भाई बहनों को सम्मान देना है और सहयोग देना है। मेरे परिवार के हर सदस्य बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार रूपी बगिया के वैरायटी फूल हैं और उस वैरायटी फूलों के गुलदस्ते को मुझे बहुत सुंदर और बहुत खुशबूदार बनाना है। जिस समाज में हम रहते हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि उस पिता परमात्मा की संतान है। हर व्यक्ति का रोल अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। हम सभी के रोल को एप्रिशिएट करें। और मुझे भगवान मिल गया, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना देना और देना है। मैं आत्मा उस परमात्मा की छत्र छाया में सब गुणों और शक्तियों से भरपूर होकर विश्व की समस्त आत्माओं को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। एक मिनट हम सभी बैठे रहेंगे और बहुत प्यार से हमारी दीदी ने जो इतना सुंदर मेडिटेशन कराया है, अपने हाथों को एक बार रब करें, रब करें, ताली नहीं बजाना, रब करना है। मेडिटेशन के बाद बेटर टू गो टू द डीप इनसाइड एंड चेक योरसेल्फ इन अ साइलेंस। अपने चेहरे पे लगाएं और जो दीदी ने इतना सुंदर बोला कि मैं शांत स्वरूप हूँ, उस स्वरूप में आ जाएं। अब वो दोबारा से रब करें हाथ और दूसरे साथी के चेहरे पे लगा दें और बहुत खुशी से बोलें कि लवफुल सोसाइटी, लॉफुल सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी आप ही क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और दोबारा से रब करें और अपने अपने शरीर पे लगाएं, अपने हेल्थ पे लगाएं एंड से मेरी हेल्थ भी बहुत हेल्दी है, हैप्पी है, जो हेल्दी और लॉफुल सोसाइटी को क्रिएट कर रही है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप इन अफर्मेशंस को अगर लेते रहेंगे ना, दिस कम्स इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन। और यही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम अलग अलग जगह पर जाते हैं जहां से हमें साइलेंस मिले, मेडिटेशन मिले, क्योंकि जिन भी गेस्ट ने सब कुछ बताया, एक ही चीज लास्ट में बताई कि आप उस साधना में जाएं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर के गहरे राज को जानें, तो हम इस लवफुल लॉफुल सोसाइटी को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू हमारे मंच पर बैठे हमारे गेस्ट और साथ में हमारे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन राठी जी। आप देख रहे हैं कि इतने लंबे समय से सारे गेस्ट बैठे हैं, तो हम सब तहे दिल से जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। और हम आप सबको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, हमारा बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम, मैंने कल उस पूरा कल्चरल प्रोग्राम देखा है, तभी मुझे पता है कि जो लॉफुल सोसाइटी है और हैप्पी सोसाइटी है, अगर आपने आज रात का वो प्रोग्राम देख लिया ना, तो आधा तो आप लव और लॉ और हैप्पी वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप अभी हैं। तो शाम का जो हमारा सांस्कृतिक संध्या है, उसमें बहुत सुंदर सिंगर जो इंडियन आइडल में जज करते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी आने वाले हैं। तो हम आप सबसे आधे घंटे बाद यहाँ दोबारा आने का विनम्र निवेदन करते हैं। तो कौन कौन पहुंचेंगे, हाथ उठाएं, वेरी गुड। तो आप सीधा डाइनिंग हॉल जाएं और डाइनिंग हॉल से सीधा वापस कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। अब अपने लिए ताली बजाएं और जाएं और वापस जल्दी जल्दी आए। ओम शांति।